ओम शांति। आज के इस संध्याकालीन सत्र में हमारे सन्मुख भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी उपस्थित हैं। इंदौर जोन से पधारे हुए, मौन भट्टी में आए हुए ये ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने डॉक्टर साहब का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर गुप्ता जी वर्तमान समय विशेष शांतिवन के पास जो ट्रॉमा सेंटर बाबा का हॉस्पिटल है उसकी संपूर्ण जिम्मेवारियां संभाले हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात है जो हम सभी कुछ हद तक जानते भी हैं कि प्यारा बाबा, दिल लेने वाला दिलवाला बाबा, और डॉक्टर सतीश गुप्ता जी दिलवाला बाबा के दिल के डॉक्टर और राजयोग की टेक्निक से सबके दिलों को राहत देने वाले, दिलों के बंद रास्ते खोल देने वाले। जो एक विशेष मुकाम आपने राजयोग की रिसर्च से हासिल किया है, जिस राजयोग की सिद्धि को विज्ञान भी मानता है और बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन वाले लोग भी स्वीकार करते हैं, तो जो डॉक्टर साहब का ये रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसको बाप दादा भी अनेकों बार याद करते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि आप दिलों को राहत देने वाले, दिल के दरवाजे खोल देने वाले, दिलों को दिलाराम बाबा के साथ जोड़ देने वाले विशेष आत्मा है। हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के रथ की भी आपने बहुत दिल से सेवा की है और अभी भी सभी महारथियों को जब भी जरूरत पड़े तो तुरंत डॉक्टर साहब 2400 घंटे अथक सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे बेहद ब्राह्मण परिवार के तन को और मन को भी स्वस्थ रखने वाले डॉक्टर साहब का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डॉक्टर साहब से मन को जीतने से जगत जीत बनने की विधि क्या है, इस विषय पर आपके अनुभव युक्त ऐसी सुंदर प्रेरणा भरे विचार सुनेंगे जो हमें अनुभव करेंगे कि मन पर हमारी विजय हो रही है। आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी,
ओम शांति। हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी बाबा की कर्म भूमि है, स्वयं साकार बाबा की कर्म भूमि पर जहाँ के कण कण में बाबा के वाइब्रेशंस हैं, ऐसे आप फील कर रहे हैं, बाबा कमरा, बाबा की झोपड़ी, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, ये जाने का रास्ता बीच में है, बाबा इस पर चला करते थे ना? तो ऐसा लगता है कि मधुबन में तो जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि मधुबन में जगह जगह बाबा के वाइब्रेशंस भरे हुए हैं। तो जो पुरानी भट्टियां चलती थी ना पहले 70s में बाबा के अवेक्त होने के बाद, पिछले 2 साल से वो भट्टियां वापस शुरू हुई, आदि से अंत है ना, शुरू में शुरू हुई और भी अंत के समय फिर दोबारा से वो भट्टियों का भाग्य हम सबको मिल रहा है। मिल रहा है, ऐसा अनुभव करते हैं आप? अच्छा लग रहा है सभी को? बहुत अच्छा। चलिए, आज का विषय है मन जीते जगत जीत। अब इसके ऊपर हम दोबारा से चिंतन शुरू करें, इसके पहले एक बार दोबारा सभी मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, है ना, दोबारा से गहराई से अपने मन को और बुद्धि को एक ही बाबा शब्द बाबा में एकाग्र कर लेंगे ना? फिर देखो इस गहराई से, क्योंकि मन एक ऐसी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति विश्व की कहते हैं ना उसको, उसको भी जीतना, उसको भी जीत के अपने वश कर लेना, वो आज टॉपिक है आपका ना। तो इतना तो एकाग्र होना चाहिए कि आप समझ सकें उसको गहराई से और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकें। चलिए एक मिनट के लिए फिर दोबारा से मन बुद्धि को एकदम एकाग्र कर लें, बस एक मेरा बाबा उसमें एक ही रहे, मेरा बाबा बस, मन में भी और बुद्धि में भी, दूसरा कोई संकल्प ना हो। ओम शांति। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? मन की शक्ति है। इस दुनिया की शक्ति, मन की शक्ति, पावर ऑफ माइंड सबसे बड़ी शक्ति है, या कहें संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। मन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि मन में जैसे विचार हम करते हैं वैसे हम बन जाते, कहा जाता है ना, एज यू थिंक सो यू बिकम, है ना। जैसे हम अगर मन में अच्छे विचार करते हैं तो देवता बन जाते हैं, बुरे विचार करें तो असुर बन जाते हैं ना। एटम बम कैसे बनाया, एटम बम कैसे बना, विचार से ही बना ना। और अच्छी अच्छी चीजें जैसे एयर कंडीशनर बना, प्लेन बना, ट्रेन बनी, वो कैसे बनी, वो भी विचार से बनी है ना। तो जो भी कार्य होता है विचार से होता है ना, बिना विचार कुछ कार्य हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो विचार सबसे बड़ी शक्ति है इस दुनिया की ना। इवन योग भी कैसे लगाते हैं हम, कैसे लगाते हैं, विचारों से लगाते हैं ना, ऐसे विचार पैदा करते हैं मन में तो उससे योग लगता है ना। तो सबसे, और इवन जो बाबा ने इस साल मुरलियां चली, निर्विघ्न बनना है, विघ्न कहां पर आते हैं, मन में। वैध संकल्प कहां आते हैं, मन में आते हैं ना। नेगेटिव संकल्प कहां आते हैं, मन में आते हैं, है ना। इच्छाएं कहां पैदा होती हैं, अपेक्षाएं कहां होती हैं, एक्सपेक्टेशन कहां होती हैं, मन में होती है। अनुमान कहां लगाते हैं, मन में करते हैं ना। कोई अच्छा लगता है कहां लगता है, मन को अच्छा लगता है ना, नहीं। शक कहां होता है, चिंता भय कहां होती है, आलस कहां पर आता है, अलबेलापन कहां आता है, सब जगह ईर्ष्या द्वेष कहां है, मन में है ना, मन में ही है ना, वो भी तो मन में ही ना। तो जो है सब कुछ नेगेटिविटीज भी और पॉजिटिविटीज भी मन में होती है ना। चलिए अब हम बहुत गहराई से मन को, ऐसे मन को हमें जीतना है, जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया है ना। माया भी कहां, माया का असर सबसे ज्यादा कहां है, पांच विकारों का असर मन में है ना। और कर्मेंद्रियों का कनेक्शन किससे है, मन से। प्रकृति के पांचों तत्वों का कनेक्शन किससे है, मन से। अगर हमें माया जीत बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है और प्रकृति जीत बनना, तो क्या करना पड़ेगा, मन को जीतना पड़ेगा नहीं। तो अगर हमने मन को जीत लिया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, मन जीत, जगत जीत बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। तो मन सबसे, मतलब मन को जीतने का अर्थ है, मन हम जहां चाहे, जितना समय चाहे, जब चाहे, उतना समय वहां लगा सके, है ना। हमें परमधाम में मन लगाना है ना। तो ये नहीं कि बस एक सेकंड पहुंचे और एक सेकंड नीचे आ गए, चाहते हैं हम ज्यादा समय रहना, रह नहीं पाते हैं। कि हम 15 मिनट रहना चाहें, 15 मिनट रह जाएं परमधाम में, नहीं। बाबा की गोद में आधा घंटा रहना चाहें तो आधा घंटा रह जाएं, और जब चाहें। ऐसा नहीं कि बस सुबह योग करने बैठे तो रह गए, नहीं, ऐसा नहीं। अभी चलते फिरते मान लो दिल कर रहा है कि हम बाबा की गोद में पहुंच जाएं, तो ऐसी स्थिति हर जगह, ऐसी स्थिति बन सकती है। खाना बनाते बनाते माताएं बाबा की गोद में चली जाएं, ऐसा हो सकता है। बाबा की गोद में बैठे बैठे खाना बना लें, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऑफिस में रहते, ऑफिस में काम करने वाले भाई बहन ऐसा कर सकते हैं, बाबा की गोद में बैठे बैठे खाना बना लें, मन से वहां पहुंच जाए और बाबा की गोद में बैठे बैठे दुकानदारी करते रहे, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। मतलब अगर मन पर हम जीत पा ले तो सब हो सकता है ना। हम निर्विघ्न बन सकते हैं ना, हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं, माया जीत बन सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं ना। विक्रमाजीत भी हम कब बनेंगे, विक्रमाजीत भी हम कब बनेंगे, जब हमारा मन जीत लेंगे ना, मन पर विजय हो जाएगी। कर्मातीत भी कब बनेंगे, है ना। फरिश्ता भी किसे कहते हैं, जिसके पास 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो, जिसका मन एकदम 100% शुद्ध हो, मन क्लियर हो, जिसका मन एकदम 100% स्वच्छ हो, जिसने मन को जीत लिया हो, वो कौन है, फरिश्ता, है ना। तो सारी जो ज्ञान का सार है ना, वो क्या है, मन पर विजय प्राप्त करना है ना। अगर मन को विजय प्राप्त कर ली तो क्या होगा, हम क्या बन जाएंगे, संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे, है ना, फरिश्ता बन जाएंगे, है ना, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। चलिए अब हम थोड़ा गहराई में चलते हैं। मन के तीन आस्पेक्ट हैं, आप सभी जानते भी होंगे, एक तो है अचेतन मन, जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ठीक है। एक है कॉन्शियस माइंड, है ना, एक चेतन मन है जो हमारे कंट्रोल में है। चेतन माइंड, चेतन मन हमारे मन में, मन हमारे कंट्रोल में है, कॉन्शियस माइंड। और एक है अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, हमारा चित्त, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में है। अगर हम देखें, हमारा लगभग 70-80% मन जो है वो अचेतन मन है या अनकॉन्शियस मन है, 15-20% मन जो है हमारा अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड है, और सिर्फ 5% मन हमारा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। सिर्फ 5% हमारे हाथ में, सिर्फ 5% कंट्रोल में है, और सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही आंख बंद करते हैं सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है, सारे सपने सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो कॉन्शियस माइंड को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, किंतु अवचेतन और चेतन मन को कैसे, अचेतन मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। चलिए अब उसकी गहराई में चलते हैं। अवचेतन मन जो है इस जन्म का अवचेत, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड इस जन्म का है, फिर मैं इसकी गहराई में चलेंगे। अब क्या है अनकॉन्शियस माइंड, क्या है, तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड इस जन्म का है और अनकॉन्शियस माइंड पिछले जन्मों का है। 63 जन्म जो हमने पाप कर्म किए, वो सारे के सारे कहां रिकॉर्ड है, कहां रिकॉर्ड है, अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है। और सबकॉन्शियस माइंड में इस जन्म के पाप कर्म रिकॉर्ड है, इस जन्म के पाप कर्म कहां रिकॉर्ड है, सबकॉन्शियस माइंड में, जिसे चित्त कहते हैं। और कॉन्शियस माइंड इस जन्म का हमारा चेतन मन है जो हमारे कंट्रोल में, ठीक है। तो सिर्फ इस जन्म का चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड होता है, पिछले जन्मों का सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता है, ठीक है। अब जितना हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो भी हमने पाप कर्म किए वो रिकॉर्ड होते आए, और उसके अनुसार हमको ये जन्म में माता पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, घर हमें मिलता है, रिश्तेदार मिलते हैं, धंधा मिलता है, बिजनेस मिलता है, है ना, साथी, जीवन साथी मिलता है, बच्चे मिलते हैं, है ना। पिछले जन्मों के पाप कर्मों के आधार पे या अच्छे कर्मों के आधार पे इस जन्म में आपको घर मिला है, माता पिता मिले हैं। आपके जन्म कैसे थे उसके अनुसार आपके माता पिता मिले, जैसे पिछले जन्म जिससे आपका बहुत संबंध था, लेन देन बाकी था, वो आपके क्या बन गए, माता पिता। और माता पिता से आपको जीन्स मिले, आपने कैसे कर्म किए थे उनका सब टोटल क्या हुआ, बीमारी के जीन्स मिल गए, ब्लड प्रेशर का जीन मिल गया, डायबिटीज का मिल गया, हार्ट डिजीज का मिल गया, गठिया का मिल गया, मोटापे का मिल गया, है ना। तो पिछले जन्मों का पाप कर्म के अनुसार मिलेंगे ना जीन। अब आप चाह करके भी जीन्स से बच सकते हैं क्या, जो जीन्स आपको मिल गए वो क्यों कहते हैं ये मेरे पिछले जन्म का पाप कर्म, मुझे डायबिटीज हो गई, क्यों हो गई, पिछले जन्मों का पाप कर्म का फल है ना, मुझे हार्ट की बीमारी हो गई, मुझे मेरी हड्डियां जन्म से ही खराब है ना, मुझे मेरे दमे की बीमारी जन्म से ही है ना, नहीं मुझे दौरे पड़ते हैं, है ना, नहीं होता, नहीं होता, किसका दोष है, माँ बाप से जीन मिले हैं इसलिए मुझे वो बीमारी हुई, ठीक है। माँ बाप से जीन क्यों मिले, वो क्योंकि मेरे पाप कर्म उनके थ्रू चुकते होने थे, है ना, ठीक है। तो अब ये इस पर कंट्रोल है किसी का, मेरे कर्म करने की छुट्टी हमको है, फल पाने की छुट्टी है, माँ बाप चाहे तो हम अपनी इच्छा से चूज कर सकते हैं कि मैं इनके पास जन्म लूंगा, इनके पास नहीं लूंगा। मेरे माँ बाप मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, तो गरीब किस लिए हैं, मेरे पाप कर्मों का फल, ठीक है, क्योंकि मेरे को गरीब के पास जन्म लेना था। अगर मैंने ऐसे कर्म किए होते तो मैं अमीर के पास जन्म लेता, नहीं। मेरे भाई बहन कैसे हैं, मुझे कैसा वातावरण घर में मिला, मेरा वातावरण घर में बहुत शुद्ध वातावरण है, खराब वातावरण है, घर में शराब पीने वाले हैं या सब अच्छा चाल चलन वाले हैं, किस हिसाब से मिला, पिछले जन्मों कर्मों के साथ, मतलब जैसा परिवार मिला, इसको चाह करके भी अवॉइड नहीं कर सकते। कर सकते हैं अवॉइड, छोड़ सकते हैं? आप चाहते हैं बाबा का बनना, आपके घर वाले साथ नहीं देते, तंग करते हैं, तो आप शाकाहारी पर रहकर रहना चाहते हैं, घर वाले शाकाहारी रहने नहीं रहने देते हैं ना। आप लहसुन प्याज छोड़ना चाहते हैं, घर वाले कहते नहीं खाना पड़ेगा। कौन से कर्म है? पिछले जन्मों के कर्म। ठीक है, तो पिछले जन्मों को कर्मों का हिसाब किताब किस कहां से किसमें स्टोर है? अनकॉन्शियस मन में, अचेतन मन में। वो हमारे इस जीवन को डिसाइड करता है। हम चाहते हैं करना, बाबा मिलने के बाद भी वो हमारे आज बंधन डाल रहा है, नहीं डाल रहा है? बंधन डालता है, नहीं डालता है? डालता है। तो उसकी और गहराई में हम चलेंगे, अनकॉन्शियस माइंड की गहराई में। ठीक है, अब हम चलते हैं, चलो गहराई से मन कॉन्शियस माइंड के बारे में चलते हैं, फिर हम आगे फिर सब कॉन्शियस माइंड और इसके में चलेंगे, और कैसे इस मन को हमें जीतना है। सभी जीतना, जो जीतना चाहते हैं मन को हाथ उठाओ, सीधा ऊंचा ऊंचा सीधा सीधे वाला, उल्टा वाला नहीं, ये तो उल्टा जीत जाएंगे ना। मैं देख चेक कर लूं, पहले ऊपर बोल दूं ना बाबा को कौन कौन चाहता है ना, नहीं चाहते तो फिर मैं, ये देखो एक भाई साहब ने उठाया नहीं, सेकंड वाले, हाँ चेक, ये भी भाई साहब ने उधर नहीं उठाया पीछे। आप नहीं जीतना चाहते? चाहते चाहते, अच्छा ठीक, ये टोपी वाले भाई साहब ने नहीं उठाया, अच्छा चेक कर, चलो ठीक है, नीचे कर, नीचे। तो सभी जीतना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मन जो है, अगर हम कॉन्शियस माइंड कहें तो कॉन्शियस माइंड में चार बातें हैं ना, कहते हैं आपने सबने सुना भी होगा, 31-12-99 की मुरली जो थी ना, लास्ट पिछली सदी की लास्ट मुरली में बाबा ने मन के बारे में बहुत गहराई से बताया था। बाबा ने बड़ा क्लियर बताया था कि मन में चार एस्पेक्ट है, चार पार्ट नहीं है आत्मा के, जैसे आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां की तीन पार्ट है, आत्मा की तीन शक्तियां हैं, है ना। तो वो आत्मा के तीन पार्ट नहीं, मन बुद्धि संस्कार आत्मा के तीन शक्तियां, पार्ट है क्या? पार्ट नहीं, मन बुद्धि संस्कार उसके तीन सूक्ष्म शक्तियां, दिखाई न देने वाली। मन को हम देख सकते हैं, बुद्धि को देख सकते हैं, संस्कार को देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। ऐसे ही मन के फिर चार एस्पेक्ट हैं, पार्ट नहीं है, मन की चार डायमेंशन कह सकते हैं। ठीक है, मन में चार बातें होती हैं, चार चीजें होती हैं उसके। कई बार कई लोग कहते हैं मन का पार्ट कौन सा, वो वाला पार्ट, पार्ट नहीं होते मन के। ठीक है, तो मन के पहला एस्पेक्ट जो है स्मृति है। क्या है मन का पहला एस्पेक्ट? इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी, हिंदी में कहते हैं यादें, गहरी हिंदी में कहते हैं स्मृति। ठीक है, तो यादें स्मृति, जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति बनती है। जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी हमारी क्या बनेगी? स्थिति। मान लीजिए मेरे मन में याद है कि मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम क्या है? डॉक्टरी का है। तो मुझे डॉक्टर याद है तो मेरी स्थिति कैसी रहेगी? डॉक्टर मैं चलते फिरते मैं कैसे समझूंगा, अपने आप को डॉक्टर समझूंगा ना, तो डॉक्टर जैसे मेरी स्थिति रहेगी। और स्मृति अंदर ही रहती है ना, तो स्थिति कहां रहती है? वो भी अंदर ही रहती है। बाहर दिखाई देता है? दिखा है, डॉक्टर दिखा होता है क्या? कोई इंजीनियर है, बिजनेसमैन, किसी के यहां दिखा हुआ है अंदर? यहां बाहर लिखा है क्या? नहीं, वो अंदर मुझे पता है, मेरी स्मृति में रिकॉर्ड है। अब मुझे स्मृति में, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मेरे चेहरे पे लिखा है क्या ब्रह्मा कुमार हूं? अगर मैं कलर कपड़े पहन लूं, बैच निकाल दूं तो क्या होगा? कोई कह सकता है मैं ब्रह्मा कुमार हूं? नहीं कह सकते ना। तो आप भी अगर कपड़े बदल लेंगे तो क्या होगा? फिर कह नहीं सकते ना। ये अंदर मेरी स्मृति में है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं, ये स्मृति में है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है, और फिर स्थिति से हमारी समर्थी बनती है। समर्थी माना एबिलिटी बनती है कि हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मेरे मन से भूल जाए मैं डॉक्टर हूं, और मुझे कोई आके कहे डॉक्टर मुझे छाती में दर्द हो रहा, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूं? डॉक्टर के पास जाओ, है ना। मुझे भूल ही गया कि मैं डॉक्टर हूं, नहीं समझ रहे? तो स्थिति से समर्थि आती है। ठीक बात है, अगर मुझे याद रहे मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, तो क्या रहेगा कि मैं तो मायाजीत हूं, है ना, मैं बाबा मेरे साथ है। अगर मुझे याद है मैं ब्रह्मा कुमार हूं, तो फिर क्या याद रहेगा? बाबा मेरे साथ है, कोई बात में डर लगेगा ही नहीं, है ना, मैं मास्टर शिवशक्तिमान हूं। हम यही भूल गए कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं ब्रह्मा कुमारी हूं, तो क्या होगा? तो सारा जो ज्ञान का आधार क्या? स्मृति है। बाबा कहते मुझे याद करो, नहीं तो याद माना क्या? स्मृति इमर्ज कर रहा है बाबा, ये हमारी स्मृति इमर्ज कर रहा है। कौन सी स्मृति इमर्ज कर रहा है? बच्चे तुम ये स्थूल देह नहीं हो, जो हम 63 जन्म समझते हैं ना, अपने को क्या समझते हैं? स्थूल देह हम समझते हैं, ये स्थूल देह हम है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम स्थूल देह नहीं हो, तुम स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, ये स्मृति है ना। बाबा ने मैं स्मृति दिलाई, बच्चे तुम इनकी संतान नहीं हो, जो तुम्हारे देह के पिता हैं, देह की मां है, मैं तुम्हारी असली मां और बाप हूं। तो स्मृति दिलाई ना बाबा ने, तो इस स्मृति से समर्थी आ गई है ना, स्थिति बन गई, राइट। तो इस स्थिति से सारा जो ज्ञान का आधार ही क्या है? स्मृति, स्मृति है ना। आज बाबा की याद, मुरली याद है, मीठे बच्चे याद है आपको, बाबा ने क्या कहा, क्या कहा था बाबा ने? कहा बाबा से प्यार है तो याद रहेगी, अगर याद की कमी है तो क्या होगा? याद एक रस नहीं रह सकती है ना। आज इसी पे मैं सोच रहा था, याद की प्यार में कमी का मतलब क्या है? मतलब मेरा बाबा से 100% प्यार है, किसी अगर मेरा अपनी देह से भी प्यार है तो क्या हो गया? बाबा के प्यार में कमी हो गई, नहीं हो गई? मुझे मान लो कोई अपनी मां अच्छी लगती है, मां से बहुत प्यार है, लौकिक मां से, तो बाबा के प्यार में कमी होगी, नहीं होगी? तो बाबा से याद एक रस रहेगी मेरी, रहेगी नहीं रहेगी ना, बीच में मां की याद आ जाएगी ना, तो क्या होगा? मान लीजिए मुझे किसी एक्स वाई जेड किसी भी देहधारी से प्यार है, मुझे अच्छा लगता है, तो क्या होगा? तो बाबा से प्यार की कमी हो गई, नहीं हो गई? और बाबा से प्यार की कमी है तो क्या होगा? याद एक रस नहीं रहेगी, बीच में टूट जाएगी, बीच में कोई 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 वो याद आ जाएगा या वो याद आ जाएगी, नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी टोटल प्यार किससे होना चाहिए? सिर्फ एक बाबा से, ना देह से, ना देह के संबंधियों से, ना देह के स्वभाव संस्कार से, ना देह के पदार्थों से। कोई चीज दे ही हो, आपका घर है, कार है, सामान है, पैसे हैं, खाने पीने की चीजें हैं, अगर कोई भी चीज याद आई तो क्या हो गया? इसका मतलब याद में क्या है? प्यार, बाप से प्यार में कमी है। अगर आपको यहां आइसक्रीम बनी हो और आइसक्रीम याद आई तो याद एक रस रहेगी। समोसे बने हो, समोसे खाने हो, समोसा याद आया तो क्या होगा? बाबा से प्यार में कमी होगी ना, याद टूट जाएगी, नहीं? तो टोटल बाबा, इसको मैं सुबह से, मैंने 45 मिनट वॉक की ना, सारा टाइम यही सोच रहा था मैं कि प्यार में कमी का मतलब क्या है ना। बाबा ने सुबह सुबह लाइन कही ना, अगर याद में प्यार, बाप से प्यार में कमी है तो क्या होगा? हमारी याद एक रस नहीं रह सकती। याद एक रस रहनी जरूरी है इस समय, क्योंकि अचानक कभी भी विनाश हो सकता है। अचानक हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट बंद हो जाए तो क्या कर लेंगे? अंत पत्ते से गति हो जाएगी। समोसा से आज समोसा याद आया, मरते मरते तो समोसे के पास पहुंच जाएंगे, हलवाई की दुकान में उसके घर में जन्म लेना पड़े, नहीं लेना पड़ेगा ना? समोसे खुशबू सुनते रहेंगे ना, नहीं होगा ऐसे? जिसकी याद आ गई आखिरी समय में वहीं पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे? अंत में तो स्वगति हो जाएगी ना। पहुंचना था बाबा के पास, पहुंच गए हलवाई के पास, नहीं? नहीं? ऐसा करना है क्या? तो हमको मतलब याद, ये तो स्मृति सबसे बड़ी बात है। तो मन का पहला एस्पेक्ट क्या है? स्मृति, पहली डायमेंशन क्या है? स्मृति। दूसरा, फिर स्मृति के आधार पर वृत्ति बनती है। वृत्ति क्या है? वृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड, वृत्ति को कहते हैं दृष्टिकोण, नजरिया, है ना? अब जैसी मेरी स्थिति है ना, तो वैसे यहां मेरा लोगों के प्रति वृत्ति में ना एटीट्यूड होगा। मेरी आत्मिक स्मृति है, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, तो मेरे को क्या मेरा वृत्ति क्या होगी सबके प्रति? आत्मिक होगी ना, रूहानी होगी ना, सब आत्मा दिखाई देंगे। देखो इस साल बाबा ने क्या कहा था मुरलियों में, अपनी वृत्ति के द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, था याद है? पहली मुरली विदेशियों के साथ, अक्टूबर की मुरली चली ना जो बाबा की, तो वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करो, याद है? तो मेरी वृत्ति जैसी होगी, फिर मैं अपनी वृत्ति से दूसरों की वृत्ति बदल सकता हूं। वो कैसे बदलते हैं, हम आज इस पर चिंतन करेंगे, ठीक है? तो जैसी मेरी वृत्ति होती है, उसके अनुसार फिर मेरा वायुमंडल बनता है। क्या बनता है? वायुमंडल बनता है। वायुमंडल कहां तक जाता है? मैंने बताया स्थिति का असर हमारे अंदर तक ही होता है, बाहर तक नहीं। अधिकतर चेहरे पे चमक आ सकती है स्थिति से, अंदर जो स्थिति मेरी है, मैं आत्मा हूं, तो अगर मैं अपने को आत्मा समझ के बैठा हूं, परमात्मा की याद में बैठा हूं, तो मेरी स्थिति से चेहरे पे चमक आ जाएगी, चेहरा चमक जाएगा, है ना। किंतु पर रहेगा मेरे अंदर ही, किंतु जो मेरी स्थिति से जो वृत्ति पैदा होती है, एटीट्यूड पैदा होता है, वो उसका असर कहां होता है, उसके उससे वायुमंडल बनता है। वायुमंडल ना, जैसे सपोज हम इस हॉल में बैठे हैं, मेडिटेशन हॉल में, पूरे मेडिटेशन हॉल में उसका वायुमंडल बन जाएगा। जहां पर वो व्यक्ति प्रेजेंट होता है, जहां जिसकी जिसकी वृत्ति जैसी होती है, उसका वायुमंडल वहां तक फैलता है। नेगेटिव वृत्ति वाला होगा तो उस जगह पर, पूरे उस जगह पर नेगेटिव वायुमंडल हो जाएगा। जैसे घर में एक व्यक्ति नेगेटिव वृत्ति का हो तो सारा वायुमंडल नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वृत्ति का वायुमंडल व्यक्ति होगा तो सारा वायुमंडल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसे सपोज तीन चार व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, कहते ये काम तो हो ही नहीं सकता, कि तू एक आदमी बीच में आए, अरे ये काम तो बहुत सहज है, मैं इसको ऐसे कर दूंगा। सब चारों पांच चारों लोग हिम्मत हार गए थे, अब पॉजिटिव आया, पॉजिटिव वृत्ति वाला, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति आया, उसने कि सारा वायुमंडल कैसे कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। इसके ऊपर हम गहराई से जाएंगे कि कैसे वृत्ति का कनेक्शन एक्चुअली हमारा आभा मंडल है। जैसे जैसे हमारा, हम सूक्ष्म शरीर की बात करेंगे थोड़ी देर में, तो जैसे जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर बड़ा होता है ना, जितना बड़ा हमारा सूक्ष्म शरीर हो जाता है ना, उतनी दूर तक वायुमंडल फैलता है। और उस वायुमंडल के द्वारा, उस वायुमंडल में जो भी आत्मा आती है, जो भी भाई बहन हो या लौकिक हो अलौकिक हो, चाहे दुनिया ज्ञानी भी हो, वो आते हैं तो उनको भी टच होता है। वो अपने देह को, देहभान को भूल जाते हैं, अपने मन में गलत भावना लेके आए, वो जैसे बाबा के सामने होता था, ब्रह्मा बाबा जहां होते थे, ब्रह्मा बाबा को जैसे मारने भी आते थे ना, जैसे सरदार जी बाबा को मारने आया, उसकी पत्नी ज्ञान में आती तो उसने कहा मैं, बाबा ने तो मेरा घर बिगाड़ दिया। उस पत्नी को मना करता था, वो मानती नहीं थी, तो बाबा को कृपाण लेके मारने के लिए आया, है ना। तो वो लेकर के आया, तो उसको जैसे वो नजदीक आया ना, दूर से तो सोचता हुआ आ रहा था, जैसे बाबा के सामने दूर से देखा बाबा यहाँ पे अपना काम कर रहे, कुछ काम कर रहे थे, तो बाबा को देखा तो बाबा, उसको सरदार को पता क्या दिखाई दिए, वो क्या दिखाई दिए, गुरु नानक देव दिखाई दिए, है ना। तो उसको तुरंत से कृपाण फेंक दी अपने, अरे मैं क्या करने चला था, गुरु नानक देव को मारने चला था क्या। तो मतलब कैसे, जैसी उसकी वृत्ति थी ना, जैसे वो आया ना, तो वो वृत्ति परिवर्तन हो गई। किसी किसी को बाबा सिर्फ लाइट ही लाइट दिखाई देते थे, बाबा को मारने के लिए आया तो बाबा दिखाई नहीं देते थे, लाइट ही लाइट लाइट दिखाई दे रहे। तो वायुमंडल था बाबा के आसपास, जो वायुमंडल था ना, क्योंकि बाबा की वृत्ति कैसी थी, सबके प्रति कैसी थी, रूहानी वृत्ति थी, आत्मिक वृत्ति, किसी को भी वो देह नहीं समझते थे। हर एक को, वैसे सीबीआई वाला आए, दिल्ली से सीआईडी वाले आए इन्वेस्टिगेशन करने के, 1962 में जब बाबा ने कहा ना क्या छोटे से धरती के टुकड़े के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना, तो वहां दिल्ली से गवर्नमेंट से ना सीआईडी के लोग आए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसा बोल रहा है, ये देश के खिलाफ बात हो गई ना, कि भारत की सेना मर रही है उधर, यहां बोल रहे हैं कि छोटे से टुकड़े के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना। तो बाबा को डर लगा क्या, क्योंकि बाबा के सबके प्रति आत्मिक थी। तो बाबा को जो मिला ना, तो वो तो पहले पैरों में आके गिर गया, सीआईडी वाले इंस्पेक्टर जो थे ना, पैरों में आके गिर गया। फिर बाबा को, बाबा के तो देखे जाए, फिर बाबा से क्या पूछा, फिर बाबा को बोला अंत में कि बाबा आगे से नहीं बोलना, ये ना ये बात आगे से नहीं कहना कि छोटे टुकड़े के लिए क्या फर्क पड़ता है। तो उसने कहा मैं थोड़ी ना बोलता हूँ, वो तो जो आता है ना मेरे अंदर, जो आता है वो बोल के गया। तो कहते बाबा उसको बोल देना कि वो आगे से ना बोले, है ना। तो मतलब वृत्ति की जो बात है ना, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि वृत्ति जो है, आप हमारी जैसे वृत्ति आत्मिक सबके प्रति रूहानियत वाली होती है। बाबा कहते आत्मा, बाबा ने कई मुरली चलाई ना इसके बाद, कई पीछे चार पांच मुरली चली, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो ना। तो अगर मेरे अंदर भी मेरी वृत्ति, जब मेरी स्मृति में रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, ब्रह्मा बाबा ने मुझे या बाप दादा ने मुझे कोटों में से कोई उसमें चुन करके मुझे अपना बनाया है, है ना, और मैं परमात्मा की संतान हूं, तो क्या होगा, मेरी वृत्ति सबके प्रति कैसी हो जाएगी, आत्मिक। तो मेरा वायुमंडल कैसा रहेगा, जहां भी मैं रहूंगा कैसा हो जाएगा, रूहानी वाला हो जाएगा। और वृत्ति से फिर भावना बनती है, जैसे भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं, और वाइब्रेशन कहां तक जाते हैं, वाइब्रेशन हजारों किलोमीटर दूर तक जाते हैं। कितनी दूर तक, जहां तक आप पहुंचाना चाहो। सपोज आपका दिल्ली में कोई भाई रहता है, दिल्ली में माता पिता रहते हैं, दिल्ली में कोई दिल्ली के लोगों की आप सेवा करना चाहते हो, तो यहां बैठे बैठे आप हजारों लोगों की तो वाइब्रेशन पहुंचा सकते हो। किसके, कि सबके सब अपने को आत्मा समझो, मतलब है ना, हम देही नहीं, हम आत्मा है, देखो चलाने में सूक्ष्म स्थूल, देखो चलाने में सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, ये वाइब्रेशन सब आत्मा को, जितनी आत्मा को डालना चाहो डाल सकते हो, ये वाइब्रेशन है, ठीक है। अमेरिका में डालना चाहो अमेरिका तक पहुंचा, वे वाइब्रेशन आप दूर तक फैला सकते हो। जैसी मेरी भावना, किस भावना के आधार पे, शुभ भावना के आधार पे, कि इन मेरे भाई बहनों का भी कल्याण हो, ये भी अपना वर्षा बाबा से ले ले, ठीक है ना। तो इसको मतलब इस आधार पे आप वाइब्रेशन कहां तक भी पहुंचा सकते हो। एक्चुअली मनसा सेवा का ये साधन है, बाबा कहता मनसा सेवा करो, आखिरी समय में सुनने सुनाने का पार्ट खत्म हो जाएगा, हो गया ऑलरेडी, है ना, अभी सुनने सुनने का, अब ये पार्ट बाकी बचा है। जब हमारी ऐसी प्रति, हमारी सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना हो जाए कि हर एक का कल्याण हो, विश्व का हर व्यक्ति बाप को पहचाने, बाप से अपना वर्षा ले। बाबा ने क्या कहा 31 जनवरी की मुरली में, क्या कहा, आपके एरिया में कोई रहना जाए, गली गली में, गांव गांव में, सबको संदेश दो, कोई रहना जाए, कोई कहीं रहना न दे कि हमारा बाप आया था और आपने हमको बताया भी नहीं। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसी आत्मा है जहां पहुंच में, कई जगह ऐसे जहां पहुंच भी नहीं सकते, बहुत पहाड़ हैं, बहुत आदिवासी एरियाज हैं, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते, तो कैसे पहुंचेंगे उनको। शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस सारे उन लोगों तक पहुंचेंगे। अब श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जाए या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के पास जाते हैं तो क्या महसूस होता है, वो मूर्ति कुछ बोलती है क्या, कि तो उस मूर्ति से वाइब्रेशन, हमारी ये भावना है उसके अंदर ना कि ये संपूर्ण पवित्र है, ये भगवान है, तो उससे वाइब्रेशन फील होते नहीं होते हमें। देखो मूर्ति के सामने हम कितना भी अहंकारी व्यक्ति जाए क्या होगा, सबसे पहले देवान भूल जाता है ना, भले उसको ये समझ नहीं आती मैं आत्मा हूं, पर देह का भान जरूर भूल जाता है, नहीं भूलता है, देखा मैं भान भूल जाता है ना, उसकी वृत्ति परिवर्तन हो जाती है, ईगो ईगो जो होती है अंदर से निकल जाती है, झुक जाता है ना, झुक जाता है ना, और वाइब्रेशन शांति के, प्यार के, खुशी के महसूस करता है, नहीं करता है। और संकल्प कैसे महसूस होते हैं उसको अपने अंदर, चोर भी होता है ना, डाकू भी होता है, मर्डरर हत्यारा भी हो तो क्या करेगा, कैसे कैसे संकल्प उठेंगे उसको, अच्छे संकल्प उठते हैं ना। तो मूर्ति से भी ऐसे वाइब्रेशन उसको, क्योंकि उसमें उसकी भावना है ना, तो भावना से वाइब्रेशन बनते हैं, किससे बनते हैं, भावना से वाइब्रेशन बनते हैं, और फिर जैसी भावना होती है वैसे विचार चलते हैं। अब मेरी जैसी जैसी किसके प्रति शुभ भावना है तो मेरे अच्छे विचार चलेंगे, और बुरी भावना हो तो किसके प्रति, बुरे विचार चलते रहेंगे, है ना। तो वो विचारों से, विचारों का असर कहां तक होता है, कहां तक होता है, विचारों का असर खाली इस पर नहीं होता, विचारों का असर इवन उस पर भी होता है, हमारी जो क्या कहते हैं ना, जो पेड़ पौधों पर भी होता है, हमारे पास पास पेड़ पौधे हैं ना, उस पर भी असर होता है, चूहे घर में है, बिल्ली है, कुत्ता है ना, मतलब जो भी आपके आस पास जानवर है ना, छिपकली है ना, कॉकरोच है, इन सब पे भी असर होता है, मतलब सब कुछ जड़ और चेतन पे असर होता है, आपके संकल्पों का असर, ठीक है। और इवन हर मनुष्य पर, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, हर एक पर उसका असर होता है, संकल्पों का असर सब पर होता है, इवन सूर्य चांद तारों तक होता है। जैसा विचार आप करते हो वैसा विचार वो जाकर के सब जगह टकराता है, और टकरा के उसको उसमें चेंज करता है, और उसको फिर वापस 10 गुना होके आके आपको असर करता है। अगर आपने बुरा विचार किया तो क्या होगा, वो सारे आसपास बुरा 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 प्रभाव डालते हुए और सूर्य चांद तारों तक जाते हुए और वापिस आकर के आपको 10 गुना नुकसान करेगा। अच्छा विचार करते हो तो क्या होता है, सबको अच्छा करते हुए वापस 10 गुना आके आपको अच्छा करता है। इसलिए कहा जाता है मनुष्य के संकल्प ही इस दुनिया को सत्व प्रधान बनाते हैं या तमो प्रधान बनाते हैं। इस दुनिया को सड़क बनाने वाले भी वही हैं मनुष्य के विचार, और नरक बनाने वाले भी कौन है, मनुष्य के विचार, ठीक है। इसलिए कहा है संकल्प से सृष्टि बनती है। इसलिए कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते वैसा आप बन जाते हो। अगर हमको अपना जीवन बदलना है तो हमें क्या बदलना होगा, अपने विचार बदलने होंगे, ठीक है, पक्का। तो ये स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, इनको इनके इंग्लिश में करें तो क्या बनेगा, एम फॉर मेमोरीज माना स्मृति, वृत्ति माना एटीट्यूड इंग्लिश में, इमोशंस माना भावनाएं और थॉट्स माना संकल्प या विचार। तो इनको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स और मेमोरीज, क्या बन गया इसका पहला अक्षर जोड़े तो टीम बन गया ना, टीम, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स और मेमोरीज ना। तो टीम याद रखो, जब हमारी टीम पॉजिटिव है तो क्या होगा, जब हमारी टीम पॉजिटिव तो हम क्या होगा, हम हल्का महसूस करते हैं, और जब हमारी टीम नेगेटिव है तो हम क्या महसूस करते हैं, बहुत भारी महसूस करते हैं। अब पॉजिटिव टीम कहां से पैदा होती है, नेगेटिव टीम कहां से पैदा होती है, कौन बताएगा, हैं जी, मन से तो होती है, पर पॉजिटिव कहां से पैदा कब होगी पॉजिटिव टीम, हाँ विचार तो उसमें आ गए ना, टीम में थॉट्स तो सबसे पहले आ गए, अच्छे विचार कहां से पैदा होंगे, और कोई जैसी दृष्टि। देखो एक बड़ा सिंपल सी बात है, सत्य से ट्रुथ से हमारी टीम पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव टीम पैदा होती है। अगर सत्य क्या है, मैं आत्मा हूं, तो जितना आप अपने को बार बार अपने को आत्मा देना समझ के अपने अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा शरीर को चला रहे हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप पवित्र स्वरूप शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप हूं, सातों गुणों का अनुभव करते जाएंगे तो क्या होगा आपके अंदर, क्या होगा आपके अंदर, पॉजिटिव विचार अपने आप, पॉजिटिव स्मृतियां जागृत हो जाएंगी, पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगा, पॉजिटिव भावना पैदा होगी, पॉजिटिव संकल्प पैदा होंगे। तो ट्रुथ से या रियलिटी से क्या पैदा होता है, पॉजिटिव टीम पैदा होती है, ठीक है। और नेगेटिव टीम कहां से पैदा होती है, अनरियल से। जितना आप अपने को देह समझेंगे, जितना आपके साथ लेबल जो लगा हुआ है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, तो क्या होगा, उतना आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर नेगेटिव स्मृतियां जागृत होंगी, वो ऐसा है, वो ऐसी है ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसको मुझसे मुझे बदला लेना ही है, भावना नेगेटिव पैदा होगी, है ना, संकल्प भी विचार भी नेगेटिव चलेंगे, ठीक है। तो जितना रियलिटी कॉन्शियसनेस आप बनेंगे, रियल को रियलाइज करेंगे, उतना टीम पॉजिटिव होगी, और जितना नेगेटिव होगा उतना टीम, जितना आप अनरियल को याद करेंगे बार बार उतना ही। और दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ आप खाते हैं, जो कुछ आप करते हैं, उनसे भी आपकी टीम नेगेटिव या पॉजिटिव बनती है। हमारा टेलीविजन आप देख रहे हैं, जैसा आप देखेंगे वैसा असर होगा, नहीं होगा, वैसे विचार चलेंगे ना, जैसा आप सुन रहे हैं उसके विचार चलेंगे, वैसी भावना पैदा होगी। आपको कोई किसी के बारे में बुरा, कोई किसी व्यक्ति के बारे में बुरा बोल रहा है कि वो व्यक्ति बहुत खराब है, अच्छा नहीं है, असल में बुरा नहीं है, उसका इंप्रेशन ऐसा है, या उसने जानबूझ के उसको बदनाम करना चाहता है, बदनाम करना चाहती है, तो क्या होगा आपके मन में, कैसे हो जाएगा, विचार वैसे चलेंगे, भावना गलत पैदा हो जाएगी, एटीट्यूड जब वापस वो व्यक्ति को मिलेगा जहां पहले बहुत हंस के मिलते थे, मुस्कुरा के मिलते, अच्छा समझते थे, अब मिलेंगे तो क्या होगा, आपका एटीट्यूड खराब हो जाएगा उसके प्रति, वृत्ति है तो आदमी खराब है नहीं, फिर कोई एक अच्छी बात भी उसकी याद नहीं हुआ, देखो ये जैसे करता था तो जरूर खराब होगा, हम तो सोचते थे ऐसे करता है किंतु ऐसे करता था, इसका मतलब जरूर खराब होगा, तो हमारी स्मृति बदल गई, वृत्ति बदल गई, भावना बदल गई, संकल्प बदल, तो गलत सुना सिर्फ है ना, वो गलत देख लिया, गलत बोला, उससे भी हमारी स्मृति वृत्ति भावना संकल्प बदलती है, और गलत हमने खा लिया, उससे भी हमारी स्मृति वृत्ति भावना संकल्प बदलते हैं। इसलिए कहा शुद्ध सात्विक भोजन खाना चाहिए, इसलिए कहीं बाजार का, होटल का, रेस्टोरेंट का, इवन किसी रिश्तेदारों का भी नहीं, अपने भाई अगर हमारे भाई या बहन वो ज्ञान में नहीं चलते हैं ना, तो उनका भी हाथ का नहीं खाना चाहिए। मुझे याद है मेरी छोटी बहन है ना, मेरी छोटी लौकिक बहन है, तो हम छोटी, मतलब छोटी थी तो हम घर में होता ना, सबसे छोटी वही थी, तो हमें घर में बहुत प्यार था सभी भाई बहनों को उससे ना, तो उसकी भी शादी हो गई, तो अब वो तो ज्ञान में चलती नहीं थी, हम तो ज्ञान में शुरू हो गए, तो कभी उनके यहाँ जाना होता तो भाई साहब मेरे हाथ का नहीं खाना खाते, मैं अछूत हो गई क्या, मैं अछूत हूँ क्या अभी, तो मैंने कहा अछूत तो नहीं हो आप, देखो जैसे आप मेरी बहन हो ना, आप मेरे को अपनी मेरी मेरी बहन मानती हो ना अपने आप को, तो मैं जो कहूंगा वो करोगी ना, कहते हाँ करूंगी, कहते मैं ठीक है आप ऐसे करो आप सेंटर पे जाओ जिसमें मैं जाता हूँ ना मेरे को वो पसंद है बहुत, तो वहां जाओ 7 दिन का कोर्स करो, एक साल पूरा मुरली सुन के मेरे को दिखाओ, टीचर से फोन कराओ है ना, फिर मैं आपके घर पे आपके हाथ से खाना खाऊंगा है ना। तो जब वो हमारी हमारी बात माने तो हम भी उनकी बात मान लेंगे, नहीं नहीं ऐसा है ना। तो भोजन का असर बहुत होता है ना। मैं उसके हाथ में उसके प्यार में आके खा लूं तो मेरा क्या, मेरा ही सेंसिटिविटी, मेरी भी मेरे संकल्प वैसे चलेंगे नहीं चलेंगे है? तो कभी भी मतलब हमारा, तो इसलिए बाबा ने कहा हियर नो इविल सी नो इविल टॉक नो इविल थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। इसमें दो मैंने बातें और ऐड कर दी, रीड नो इविल है ना। मैगजीन भी कई बार पढ़ते हैं ना, कुछ चीज हम मैगजीन पढ़ते हैं कुछ पढ़ते हैं उसमें खराब बातें लिखी होती हैं वो भी नहीं पढ़ो ठीक है, और ईट नो इविल है ना। जो तामसिक भोजन है ना, तामसिक भोजन कौन कौन सा होता है, लसन प्याज है ना, ये जो अचार खाते हैं है ना, अचार होता है ना, अचार तरह तरह के अचार खाते हैं, ये तामसिक भोजन है, हमारे अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करता है, उससे उत्तेजना पैदा होती है, ब्रेन इरिटेट होता है ना। अचार है जैम्स है ये सब नहीं खाने चाहिए जहां तक हो सके, इवन चाय कॉफी पीना भी तामसिक है जो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है ठीक है, तो ये भी नहीं जहां तक हो सके नहीं पीनी चाहिए ठीक है। बीमारी दवाई के रूप में कभी ले लिया तो अलग बात है चाय, किंतु आदत पड़ जाए उसके बगैर हमें पेट साफ ना हो, उसके बगैर नींद हमें थकावट हो, उसके बगैर हमें काम ना कर सके, वो गलत बात है, वो एडिक्शन है ठीक है ओके। तो इस तरह से आप इसका भी ध्यान रखना चाहिए है ना। तो एक तो ईट नो इविल और रीड नो इविल, क्योंकि पढ़ने का बड़ा असर पड़ता है ना, जो आप पढ़ते हो ना उसके अनुसार फिर आपकी टीम पैदा होती है। और याद रहे फरिश्ता माना पॉजिटिव 100% पॉजिटिव टीम, फरिश्ता माना 100% पॉजिटिव। अब आप देखिए हम चलते हैं थोड़ा सा इसकी सबकॉन्शियस मन क्या है ना, सबसे हाँ जी हाँ जी, टी फॉर थॉट्स माना संकल्प विचार, ई फॉर इमोशंस माना भावनाएं, भावनाओं के आधार पर वाइब्रेशंस बनते हैं, संकल्प के आधार पर सृष्टि बनती है, और ए फॉर एटीट्यूड्स माना वृत्ति, वृत्ति के आधार पर वायुमंडल बनता है, और फिर एम फॉर मेमोरीज, मेमोरीज माना स्मृति, स्मृति के आधार पर स्थिति बनती है या समर्थि बनती है ठीक है। तो ये हमारे कॉन्शियस मन की मैंने बात की आपको, जो हमारा सिर्फ 5% 5 से सिर्फ 8% होता है ना, 92-95% से लेकर 92% मन तक हमारा मन हमारा अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस, जो हमारे जिसका हमारे पर कंट्रोल नहीं है। और फरिश्ता माना 100% कॉन्शियस माइंड, फरिश्ता माना 100% कौन, हमारा लक्ष्य क्या है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, नहीं ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। तो हमारा मतलब हमारा 100% मन हमारा कॉन्शियस होना चाहिए, जब हमारा 100% मन कॉन्शियस तभी तो हमारा 100% कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आएगी, नहीं तो मैं बैठा बाबा को याद करने बीच में क्या आ गया, सबकॉन्शियस माइंड की फाइल खुल गई है ना, कहां चला गया, हॉस्पिटल में चला गया, बैठा हूं याद करने वहां आईसीयू में पहुंच गया है ना, सबकॉन्शियस माइंड भरा हुआ ना, वो तो हॉस्पिटल पहुंच गया है ना, तो मेरे को वो तो नहीं सेवा के विचार आने शुरू हो गए सबकॉन्शियस से, वो तो मैं गलत बात है ना। जब मैंने एक संकल्प कर लिया कि मुझे सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में जाना है, बाबा से रूहानियत करनी, बाबा से बात करनी, सारे विश्व की सेवा करनी, मन से सेवा करनी, तो मेरा वही काम आधा घंटा होते रहना चाहिए ना, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए ना कितनी, तो मैं ब्रेक लगाऊं और ब्रेक लगे ही नहीं तो कहां कंट्रोल होगी, गाड़ी तो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। तो मुझे फरिश्ता का मतलब ये है 100% कॉन्शियस माइंड ठीक है। देवताओं का मन भी 100% कॉन्शियस होता है, देवताओं को सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता ही नहीं, अनकॉन्शियस माइंड का निर्माण ही द्वापर युग से शुरू होता है, और सबकॉन्शियस हर जन्म का माइंड सबकॉन्शियस, एक जन्म का सबकॉन्शियस बाद में अनकॉन्शियस में चला जाता है, वो भी फाइलें अनकॉन्शियस चली जाती है ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस बनता जाता है, थोड़ा सी गहराई में चलते हैं। देखिए आत्मा जो है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, आत्मा से 7 एनर्जी निकल रही है, आत्मा यहां से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में लगभग यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे है। आत्मा से जो एनर्जी निकल रही है 7 एनर्जी, वो क्या वो शुरू में वो यहां जो एनर्जी निकलती है वो स्पिरिचुअल एनर्जी हो गई, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां आत्मा से निकल रही हैं, और वो यहां की सेल्स, हाइपोथैलेमस की सेल्स उस एनर्जी को सेंस करती हैं। जैसे आपको पता है नर्मदा डैम है ना, नर्मदा डैम जो है ऐसे सतलुज का भाखड़ा डैम है, ऊपर से पानी 400 फुट से पानी के नीचे गिरता है और किस पे गिरता है, टर्बाइन्स पे गिरता है, बड़ी बड़ी टर्बाइन्स होते घूमती हैं जोर से पानी के वेग से, तो क्या पैदा होता है, बिजली पैदा होती है, उसको डायनामो में इकट्ठा कर लेते हैं और डायनामो में इकट्ठा करके क्या करते हैं, फिर 22,000 वोल्ट की तारे होती हैं, बड़ी बड़ी वैसे तारे होती है, बहुत हाई टेंशन वायर्स होती हैं, फिर उसके बाद 11,000 वोल्ट की टेंशन वायर्स होती हैं और वो फिर उसके बाद हमारे घरों में कब आती है, 220 वोल्ट की करंट आती है, उससे क्या क्या होता है हमारे घरों में, क्या क्या होता है, बल्ब जलता है, ट्यूब जलती है, पंखे चलते हैं, एसी चलता है, हीटर जलते हैं, है नहीं, और क्या होता है, रेडियो चलता है, टेलीविजन चलता है, नहीं, वॉशिंग मशीन चलती है, और क्या चलता है, मोटर चलती है, और हाँ क्या करते हैं, और क्या करते हैं घर में, क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, और क्या करते हैं, फ्रिज, फ्रिज, हाँ फ्रिज, हाँ फ्रिज करते हैं, आइसक्रीम जमाते हैं, है ना, है ना, कितने सारे काम करते हैं। अब आत्मा में 7 एनर्जी यहां पर है, परमात्मा 7 एनर्जी हमारे पास आती रहती है, हम बाबा को याद करते हैं, 7 एनर्जी आई, ये आत्मा क्या करती है, ये सेल्स क्या करती है, यहां रिसीव करती है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी किसमें बदल जाती है, मानसिक ऊर्जा में बदल जाती है, टीम में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, पॉजिटिव टीम में बदलती है, यहां पर यहां की सेल्स स्पिरिचुअल एनर्जी, ये ज्ञान टीम में बदल जाता है ना, पवित्रता टीम में बदल जाती है ना, शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियां टीम में बदल जाती है ना, और वो टीम फिर क्या करती है, वो विचार फिर अल्टीमेटली सब कुछ किसमें बदल जाता है, विचार में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, विचारों में बदल जाता है। स्मृति से भी क्या निकलेगा, विचार निकलेगा ना, स्मृति अकेली क्या करेगी, स्मृति से विचार बनेगा, वृत्ति से भी क्या बनेगा, विचार बनेगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा, विचार के थ्रू होगा, और भावना से भी क्या बनेगा, विचार बनेगा, ठीक है, तो अल्टीमेट विचार बनता है, और विचार से क्या होता है, विचार फिर जो है यहां पर एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हर विचार के लिए एक न्यूरोपेप्टाइड होता है यहां पे, हाइपोथैलेमस में बनता है और वो खून के द्वारा सारी बॉडी में फैल जाता है, न्यूरोपेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड एक केमिकल है, फिजिकल केमिकल है, मतलब फिजिकल एनर्जी फिर बदल जाता है, फिर भौतिक ऊर्जा में बदल जाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी पहले, फिर मानसिक, मानसिक माना मानसिक मन की एनर्जी, और उसके बाद अल्टीमेटली किसमें बदला, वो भौतिक एनर्जी में, ठीक है, और फिर सेल्स को उससे उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। अब यहां कैसे कैसे क्या हो रहा है, इसी ऊर्जा से क्या चल रहा है, हार्ट चल रहा है, सांस आ रहा है, शांति से सांस आ रहा है, प्रेम से हार्ट चल रहा है, खुशी से खाना पच रहा है ना, आत्मा के साथ गुण है ना, ज्ञान से दिमाग चल रहा है ना, पवित्रता से आंखें देख रही हैं, पवित्रता नहीं होता आंखें, आंखों में क्या दिखाई देगा, है ना, इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने का सिस्टम पवित्रता के कारण चल रहा है, शांति से फेफड़े, जितना शांति उतना अच्छा सांस चल रहा है, अशांति हो जाए तो सांस कैसा हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा ना, फास्ट चलना शुरू हो जाएगा, प्रेम से हार्ट चल रहा है, गुस्सा आ जाए तो हार्ट को क्या हो जाएगा, है ना, हार्ट की धड़कन ऊपर नीचे हो जाएगी ना, है ना, खुशी से पेट में खाना पच रहा है, खुशी ना हो तो क्या होगा, लीवर काम कर रहा है खुशी से, आनंद से हार्मोन्स कार्य कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस के, पिट्यूटरी के, पिनियल के, थायराइड का, थायराइड खुशी ना हो तो क्या होगा, खुश थायराइड की बीमारी हो जाएगी, पैनक्रियास डायबिटीज हो जाएगी, है ना, एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन खराब हो जाएगा, है ना, नहीं, शक्तियों से हमारे जोड़ चल रहे हैं, जोड़ में ना, जोड़ और हड्डियां, मैंने बताया ना इसे, बिजली से क्या क्या चल रहा है, फ्रिज चल रहा है ना, कूलर चल रहा है, बल्ब जल रहे हैं, पंखा चल रहा है ना, है तो अलग अलग चीज, ऐसे यहां पर हार्ट चलना अलग बात है, नहीं अलग बात है, सांस लेना अलग बात है कि नहीं है, खाना पचना अलग बात है ना, वो सारा कार्य फिर वो उसी बिजली से चल रहा है, कौन सी वाली बिजली से, आत्मा की बिजली से, ठीक है, तो यहां कन्वर्ट होके वो फिर सारे काम कर रही है, ठीक है, राइट। तो ये जो आत्मा से 7 एनर्जी निकलती है, इसको जो है इस 7 एनर्जी को जो शुरू का जो एस्पेक्ट है, इमीडिएट एस्पेक्ट जो सेल्स है, वो इसको सेंस कर लेती है 7 एनर्जी को, और उसको वहां इतनी अच्छी सेल्स हैं, इतनी बढ़िया सेल्स हैं, इतनी हाईली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जो कि जिसको हम बुद्धि का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, बुद्धि, है ना, इंटेलेक्ट, तो बुद्धि में ये ज्ञान है, पवित्रता कहाँ है? बुद्धि में, शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति है बुद्धि में, और उसके बाहर मन है। हमारी स्मृति यहां है, यहां रिकॉर्ड रहती है, वृत्ति और भावना यहां रिकॉर्ड रहती है, और इसके द्वारा सारा कुछ फिर जो यहां पर जो जब हम देखते हैं सुनते हैं बोलते हैं, पांचों कर्मेंद्रियां ना हमारी, तो फिर वो फाइलें खुलती हैं यहां से, स्मृति से और वृत्ति से और भावनाओं से, और फिर वो यहां पे विचारों के रूप में आती हैं, ठीक है, और विचारों के रूप में आके फिर वो आगे उनका एक्शन शुरू होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको? मुश्किल लग रहा है? चलो कोई बात, इतनी बात नहीं समझो, वो डॉक्टर्स के लिए मैं ऐसी बातें करता हूं वैसे ना, पर मैंने कहा इंदौर वाले सब डॉक्टर्स ही होंगे शायद ना। अच्छा कोई बात नहीं, समझ थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है ना थोड़ी, चलो कोई बात नहीं। आनंद से हार्मोन्स। तो फिर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुद्धि के बारे में, थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को जब तक क्लीन नहीं करेंगे ना हम, तब तक हमारा विक्रम विनाश नहीं होंगे, ठीक है, और जब तक हम फरिश्ते नहीं बन सकते है ना। जो माताएं बूढ़ी माताएं जिनको कुछ नहीं पता, वो बाबा बाबा करके भी फरिश्ता बन सकती हैं, किंतु थोड़े पढ़े लिखे हैं ना उनको, उनको बुद्धि में कचरा निकालना पड़ता है ना, तो तब वो ठीक हो सकते हैं, इसलिए उनको समझना बहुत जरूरी है। अनपढ़ के लिए तो बहुत सहज है ना, इसलिए बाबा कहते जो कुछ पढ़ा है भूल जाओ, है ना, नहीं तो मुश्किल होगा ना। तो ये जो है, तो बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट है वो है दिल है, जिसे अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियंस कहते हैं, कॉन्शियंस समझते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, जमीर भी कहते हैं, है ना। मतलब एक चोर का, डाकू का, मर्डरर का भी कॉन्शियसनेस होती, कॉन्शियंस होती है, कहते हैं मेरी अंतरात्मा ये नहीं मानती है। एक्चुअली वो सतो प्रधानता का अंश है हमारे अंदर। आज भी जब इंसान तमो प्रधान बन चुका है, बिल्कुल तमो प्रधान बन चुका है, उस समय भी हमारी कॉन्शियंस में आज भी वो अंश है सतो प्रधान देवताओं का, ठीक है, अच्छाई का अंश है। इसलिए कहते मन के दो एस्पेक्ट है, एक अच्छा मन एक बुरा मन। अच्छा मन कहां से पैदा होता है? इस कॉन्शियसनेस से पैदा होता है, इस कॉन्शियंस से पैदा होता है, इस अंतरात्मा से पैदा होता है। अंदर की आवाज आती है ना, वो कहती है नहीं ऐसा नहीं करो, पाप है ये। पाप और पुण्य का डिसीजन कौन देती है? अंदर वो हमारा दिल देता है ना। तो इस कॉन्शियसनेस के आधार पे, इस कॉन्शियंस के आधार पे फिर हमारा विवेक बनता है। क्या बनता है? विवेक बना परखने की शक्ति। तो हमारी कॉन्शियस में या कॉन्शियसनेस में ये सातों एनर्जी आज भी विद्यमान है, ठीक है। सात है, कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। सतो प्रधान माना सात, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, सात से भरपूर। सत्युग में हम सतो प्रधान थे, द्वापर त्रेता में सतो माना सातो एनर्जी लगभग कम हो गई थी, किंतु थी फिर भी काफी थी, भरपूर थी। और फिर जो है हमारी द्वापर आया तो क्या हुआ, सातो एनर्जी 50% से कम हो गई, तो फिर क्या हो गया, रजो, रजो माना शाम, शाम हो गई, लाइट कम हो गई, है ना। फिर क्या हुआ, जैसे आपको पता है जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती हैं, कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, क्या होता है वहां होता है ना, शेयर सिस्टम होता है ना, जिसके 50% ज्यादा शेयर होते हैं वो MD बन जाता है, वो डायरेक्टर बनता है कंपनी का, है ना, उसी के फिर उसी का सब कहना मानते हैं। और अभी आत्मा की जब एनर्जी 50% ज्यादा है तो आत्मा डायरेक्टर है, आत्मा का राज्य है, स्वराज्य अधिकारी है, स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य है किसके ऊपर, मन बुद्धि संस्कार पर, पांचों कर्मेंद्रियों पर, आठों अंगों पर। इसलिए सत्युग त्रेता में कोई बीमार नहीं होता है, मन बुद्धि संस्कार हमारे कंट्रोल में रहते हैं, आत्मा एकदम स्वराज्य अधिकारी है, आत्मा का राज्य है। फिर जैसे त्रेता आया तो द्वापर युग आया तो क्या हुआ, एनर्जी 49% रह गई आत्मा के पास। फिर किसके बाद नेक्स्ट कौन है, बाहर कौन है, इसके बाहर बुद्धि के बाहर मन है। अब मन की एनर्जी 51% हो गई, अब मन बन गया राजा, अब मन बन गया डायरेक्टर, अब क्या हो गया, अब मनुष्य बन गए। क्या बन गए? पहले देवी देवता थे, फिर क्या बन गए, मनुष्य, मन के वश में, मनुष्य माना जो मन के वश में है। अब मन राजा बन गया, अब आत्मा भी राजा मन के वश में है। तो दिल से विवेक, तो सात एनर्जी के आधार पे विवेक काम करता है। जब आत्मा, जब हमारी कॉन्शियसनेस सातों एनर्जी से भरपूर है तो विवेक कैसा होगा, सत्य विवेक होता है, सद विवेक कहते हैं इसको, ईश्वर जैसा विवेक होता है, ईश्वरी विवेक बन जाता है। विवेक माना परखने की शक्ति, विवेक माना विजडम, परखने की शक्ति। फिर विजडम के आधार पे हमारी बुद्धि, बुद्धि प्रॉपर बनती है, मतलब निर्णय करने की शक्ति। इस तरह सद्बुद्धि है ना, जब आत्मा, जब दिल में सातों गुण भरपूर है, कॉन्शियसनेस में हमारे सातों गुण भरपूर है, तो हमारी बुद्धि कैसी है? सद्बुद्धि है, सत्य बुद्धि आधारित बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है हमारी, ठीक है। और उसके बाहर हमारा चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बुद्धि का पार्ट है। सबकॉन्शियस माइंड किसका पार्ट है? बुद्धि का पार्ट है, मन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के बाहर फिर कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अगर मेरी मेरी बुद्धि, मेरे दिल में, हार्ट ऑफ द सोल में सातों गुण भरपूर हैं, तो मेरा चित्त, मेरा विवेक कैसा है? सत्य विवेक है, ईश्वरी विवेक है। तो मेरा विवेक एकदम ठीक प्रकता है, सेकंड में प्रकता है, बुद्धि सेकंड में निर्णय लेती है, और फाइल कहां जाती है? कॉन्शियस माइंड में जाती है। अब मान लीजिए मेरी एनर्जी कम हो गई बुद्धि में, दिल में क्या हो गया? सात एनर्जी कम हो गई। अब सात एनर्जी कम होने के बाद क्या आ गया? अब दिल में क्या हो? जब एनर्जी कम होती है, मन का कनेक्शन किससे था? पांचों कर्म इंद्रियों से था। अब क्या ये मन क्या करता है? मन का कनेक्शन बाहर से है, तो मन क्या देखता है? आंखों के द्वारा देखता है, कानों के द्वारा सुनता है, मुख के द्वारा बोलता है, मुख के द्वारा खाता है, हाथों से कर्म करता है। तो अब वो राजा बन गया ना। अब राजा बनने के बाद वो बाहर से रस लेना शुरू करता है। अब ज्ञान, अंदर का ज्ञान नहीं, अंदर का ज्ञान कम हो गया। अब पांचों तत्वों का ज्ञान लेना शुरू करता है, आसमान में क्या है, सूरज पे क्या है, धरती के नीचे क्या है, समुन्द्र में क्या है, हवा क्या है, कैसी हवा है, इन पांचों तत्वों का ज्ञान लेना शुरू करता है। तो अब ये तत्व, फिर उसको देह दिखाई देती है ना, तो देह की तरफ आकर्षित होता है, पांचों आंखों से आकर्षित हुआ ना। तो अब जो है ये अंदर चीज जाने लगती है, अपनी देह देखता है। तो ये देह, ये कॉन्शियसनेस में चली जाती है, सबसे पहले अपनी देह कॉन्शियसनेस में जाती है, दिल में पहुंच जाती है, फिर देह के संबंध पहुंच जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, है ना, बच्चे, कहां पहुंच गए? दिल में पहुंच गए, है ना, देह के संबंध पहुंच गए। फिर देह के स्वभाव संस्कार, देह के स्वभाव पांच हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये देह के स्वभाव कहां पहुंच गए? ये भी दिल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये देह का स्वभाव है, देहभान का स्वभाव है, काम विकार। देहभान आता ही काम विकार आता है, देहभान आता ही क्रोध आता है, देहभान आता ही क्या आता है? मोह आता है, लोभ आता है, अहंकार आता है। ये अंदर पहुंच गए। और फिर देह के पदार्थ, घर है ना, चीजें, अपनी चीजें, पर्सनल चीजें, एकदम कहां पहुंच जाती हैं? कॉन्शियसनेस में, दिल में पहुंच जाती हैं। देखो थोड़ा सा कुछ चीज खो जाए ना, आपकी क्या होता है? पेन भी खो जाए ना तो क्या होता है? है ना, योग नहीं लगेगा, पेन ढूंढता रहेगा, ठीक है, नहीं तो मतलब कोई चीज, कपड़े मुंह पर क्रीम नहीं थी ना, आज क्रीम खत्म हो गई थी तो क्या होगा? कोई आपको कुछ बोल नहीं रहा, अपना मुंह यू देखते रहे, बहुत मुंह सूखा सूखा लग रहा है ना, आज क्रीम नहीं लगाई, अभी बस यहां से छुट्टी मिले क्रीम लेके आऊं, दिल में बैठी ना क्रीम भी दिल में बैठ जाती है ना। तो विवेक क्या करेगा? अब विवेक कंफ्यूज हो जाता है, परख नहीं सकता है ना, कंफ्यूज हो गया, नहीं हो गया। अब मान लिया मेरा बच्चा गलत काम कर रहा है, अब बच्चे को मैं डांटू तो मेरी युगल नाराज होती है, तुमने इसको क्यों डांटा, है ना। अब युगल गलत बात कर रही है, गलत बोल रही है वो, है ना, मेरी माँ के खिलाफ बोल रही है, किसी के खिलाफ बोल रही है, वो गलत बोल रही है, मुझे पता है गलत बोल रही है, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता हूँ, कंफ्यूज हूँ, कहूंगा तो नाराज हो जाएगी, है ना, नहीं। अब विवेक काम करेगा क्या? कंफ्यूज हो गया ना, अब बुद्धि क्या निर्णय देगी? निर्णय देगी बुद्धि, तो फाइल कहां जाएगी? उसे सेव करूंगा क्या मैं? वो चित्त में जाएगी। कहां जाएगी? वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड जाएगी, नहीं जाएगी? तो ऐसा जो भी मतलब हमारा काम विकार के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, अहंकार के कारण, हमारी बुद्धि क्या हो जाता है? हमारी विवेक क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है। और फाइलें कहां जाना शुरू करती हैं? द्वापर युग से कहां जाना शुरू करती हैं? चित्त में जाना शुरू करती हैं। जब सत्युग में थे ना हम, तो हमारा दिल क्या था? सत्य पर आधारित था, सातों गुणों से भरपूर था, दिल सत्य पर आधारित था, विवेक सत्य था, बुद्धि सत्य थी, सद्बुद्धि थी, और हमारा चित्त कैसा था? शांत, एकाग्र और आनंदमय था। तो ये कह सकते हैं जब दिल में सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप है। इसलिए शिव बाबा को हम क्या कहते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप। वो सदा सत्य है, उसका दिल में सदा सत्य है और चित्त सदा आनंद स्वरूप है। हम मनुष्य का दिल सत्युग में सत्य है, इसलिए चित्त भी आनंद स्वरूप है। द्वापर कलयुग में हमारा दिल कैसा है? असत्य है। दिल में क्या घुस गया है? देह घुस गई है। देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थ घुस गए, इसलिए चित्त कैसा हो गया? अशांत और चंचल हो गया। अशांत और चंचल हो गया। तो आज ज्यादातर फाइल कहां जा रही है हमारी? अवचेतन मन में जा रही है, सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है हमारे अंदर? जैसे ही हम सोने जाते हैं क्या होता है? सपने आने शुरू हो जाते हैं और इसके कारण हमें नींद नहीं आती है। गहरी हमारी डेल्टा रिदम क्या होती है? नींद हमारी डेल्टा स्लीप होनी चाहिए और डेल्टा स्लीप नहीं आती हमको, अल्फा स्लीप आती है, थीटा स्लीप आती है। इसलिए 6 घंटा सोने के बाद भी हम अमृत वेला भी सोते रहते हैं, यूं उठे यूं करके बैठे थोड़ी देर में ऐसे, है ना, फिर अलर्ट होते हैं, फिर थोड़ा अपने आप को याद करते हैं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और लास्ट में तो क्या हालत होती है आप देखो कभी ना, क्लास में है ना, सुबह सुबह क्लास में ऊपर मुंह खोल के सो जाते हैं, जैसे मुंह में सब ज्ञान आए, सब अमृत ऊपर से आएगा ना। कारण क्या? कारण ये सबकॉन्शियस माइंड, कारण ये सबकॉन्शियस माइंड है। ये सबकॉन्शियस इतना बड़ा हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी जन्म का, बाबा का बनने के बाद भी बड़ा हो गया। बाबा की श्रीमत कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में फाइल जाएगी नहीं जाएगी? बाबा ने दिल में तो श्रीमत बाबा के हमारे दिल में चली गई, किंतु उसके आधार पर साथ में दूसरे भी हैं, लौकिक संबंधी भी अंदर बिठा के रखे हैं और श्रीमत भी अंदर रखी है दिल में, तो क्या होगा? हम डिसीजन ले नहीं पाते, है ना, सही डिसीजन ले नहीं पाते। विवेक डिसीजन नहीं देता है, विवेक से परख नहीं पाते, बुद्धि निर्णय नहीं देती और चित्त में फाइलें इकट्ठी होती जा रही है। इसलिए बाबा कितनी फाइलें इकट्ठी हो गई हैं, फाइलों का ढेर लग गया है ना? और फिर हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा वो छोटा हो गया है, सिकुड़ के 5-7% रह गए। समझाइए अवचेतन मन। और जब हमने 22वां जन्म छोड़ा तो अवचेतन कहां चला गया? अनकॉन्शियस में चला गया। तो थोड़ी फाइल थी अनकॉन्शियस की, फिर हमने 23वां जन्म लिया तो अवचेतन उसमें बना, सबकॉन्शियस माइंड बना, और वो फिर कहां चला गया? 24वां जन्म में अनकॉन्शियस में चला गया। फिर 25वां जन्म लिया तो क्या हुआ? उस जन्म का सबकॉन्शियस माइंड कहां चला गया? फिर अनकॉन्शियस में चला। ऐसे फाइलें इकट्ठी होते गए पीछे, और वो फिर हमारी जन्म दर जन्म हमारे साथ अनकॉन्शियस माइंड के साथ आती है। अब 84वां जन्म है तो 84वां जन्म में हमारे पास कितने जन्म की फाइलें पीछे हैं? 63 जन्म की फाइल, 22 जन्म की फाइलें हमारे साथ चल रही है, ठीक है। तो ये हमारी हालत है। मैं सिर्फ आप काम याद दिला रहा हूं, कितना मन जीतना कितना सहज है ना? तो मन जीतना सहज है ना, मतलब आपको अवचेतन मन खत्म करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड खत्म करना पड़ेगा, फिर और उसका क्या है, अनकॉन्शियस माइंड, पूरे 63 जन्म का जो विकर्म किए हुए हैं वो सब भस्म करने पड़ेंगे। वो सब खत्म करने के बाद हम कॉन्शियस माइंड हमारा बनेगा 100%, और तब हम फरिश्ता बनेंगे, ठीक है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ठीक है। मंजिल नजदीक है ना। अब हम पहले मनुष्य थे, मनुष्य से हम क्या बने? ब्राह्मण। मन के वश में थे, मन के वश में ब्राह्मण माना, ब्राह्मणा बेहद, मां ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा बेहद की मां। अब हमारा ब्राह्मण कितने बने हैं? देखो अपने आप को, ब्राह्मण माना जिसका मन और बुद्धि, ब्राह्मणा बेहद मन माना मन, जिसका मन और बुद्धि बेहद में रहे, सदा हद में ना रहे। अगर मेरी बुद्धि में और मन में अभी भी देह है, देह क्या हद है ना, देह के संबंध क्या है, हद है ना, देह के स्वभाव क्या है, हद है ना, देह के पदार्थ क्या है, हद है ना। तो अगर अभी भी मेरी बुद्धि में यह है तो इसका मतलब मैं क्या हूं, ब्राह्मण बनाऊ? नहीं बनाऊ। इसकी वजह आत्मा, देह नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा के संबंध किसके साथ है? शिव बाबा के साथ, सर्व संबंध शिव बाबा के साथ है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? ये 7 गुण ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियां। और देख आत्मा के पदार्थ क्या है, प्रॉपर्टी क्या आत्मा की, दैवी गुण, सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, है ना, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, ऐसे बहुत सारे है ना, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ऐसे बहुत सारे, 56 से भी ज्यादा है ना। तो बहुत सारे देवी गुण, ये हमारी ईमान, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, वफादारी, फरमानबरदारी, ये देवी गुण, ये एक आत्मा की प्रॉपर्टी है जो जन्म बाई जन्म उसके साथ चलती है। ये प्रॉपर्टी तो यही रह जाएगी नहीं। और ये देवी गुण बनते कैसे हैं, जब आत्मा में 7 गुण भरपूर है ना, इन 7 गुणों के मिश्रण से देवी गुण बनते हैं, कर्मों में जब आते हैं वो देवी गुण दिखाई देते हैं। ये इसका रॉ मटेरियल क्या है, देवी गुण का रॉ मटेरियल क्या है, 7 गुण। जैसे आपको रोटी बनानी, तो रोटी के लिए क्या चाहिए, आटा और पानी चाहिए, और आटा और पानी ना हो तो रोटी बनाओगे, आटा बनेगा ही नहीं, रोटी बनेगी नहीं। तो जब आत्मा, जब आपके घर में आटा ही नहीं है, पानी नहीं है, तो रोटी कैसे बनाओगे, रोटी बनेगी नहीं, पेट भरेगा नहीं। तो दैवी गुण जो है हमको कैसे बनेंगे, तो जितना आपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते उतना उतना हमारे 7 गुण होते जाते हैं। मैं समझता हूँ 10 मिनट में 7 बजे तक पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, संस्कार, संस्कार कहाँ रहते हैं, आत्मा के संस्कार कहाँ है, देह के संस्कार में कहना भूल गया आपको, देह के संस्कार, स्वभाव तो मैंने बताया, देह के संस्कार भी हैं, 10 संस्कार है, देखे देह की आत्में, देहभान की संस्कार, देहभान की आत्में वो मन में रहती है, हमारी स्मृति में रिकॉर्ड है, उसके अनुसार हमारी वृत्ति, भावना और संकल्प बनते हैं। पहला जो संस्कार है देहभान का, वो है आलस्य। क्या है, आलस्य, देहभान, अपने को देह समझते हैं ना, देहभान का आलस आएगा अपने आप ही, आलस, सो जाओ ना, अभी तो रात है, अभी तो क्या, सुबह सुबह 4 की 4:15 उठ जाए कोई बात नहीं, रात को देर सोए थे ना? बाबा थोड़ा संगमी अमृत वेला, बाबा की बात बाबा पे ही लगा देते हैं ना, नहीं अलबेलापन, अरे वो तो मोबाइल, मुरली में क्या जाना, अभी तो घर में रिश्तेदार आए हैं, अभी मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ मुरली ना, नहीं मुरली मोबाइल पे पढ़ रही है ना, इंटरनेट पे मुरली आती ना आजकल, तो मुरली कहाँ पढ़ रही, मतलब अलबेलापन, केयरलेस है ना, मुरली सुनना, सेंटर पे जाके मुरली सुनना, सुनना अपने आप, पढ़ना सिर्फ पढ़ना है, मुरली सुनना, कोई भी बहन बैठ के सुनाती है मुरली सेंटर पे, बाबा उसके थ्रू पालना भी देता है, ये खाली सुनना है या पढ़ना है खाली, और उसमें पालना, मतलब शक्तियां साथ मिलती हैं, कोई भी बहन सुनाए तो वो जो मुरली सुनी हमने उसको धारण करने की शक्ति कहां से आएगी, बाबा उस आत्मा के थ्रू वो शक्ति भी देता है। आपने देखा होगा जो सेंटर पे रेगुलर जाते हैं उनको देखा, अनुभव होगा, घर में बैठ के मुरली पढ़ना और सेंटर पे जाके मुरली सुनना, मुरली धारण होती है सेंटर पे जाके सुनने से, नहीं नहीं होती, और घर में बैठ के पढ़ने से ऐसे ही जैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, तो नहीं होती है। तो ये अलबेलापन, ठीक है, हर बात में, खान पान में अलबेलापन कर, सब जगह अलबेलापन करते हैं। और इसके अलावा फिर है दूसरा, दूसरों में दोष निकालने की आदत, ये भी देहभान की आदत है, संस्कार है, बदला लेने की भावना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय, डर लगना, जल्दीबाजी, हर समय जल्दी में रहना, प्रेशर में, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपैरिजन, कंपटीशन, इसको टाइप ए बिहेवियर कहते हैं, एक समय बहुत सारे काम, हमेशा प्रेशर में रह के काम करना। और फिर लास्ट है 10वां, ईर्ष्या द्वेष। ये देह के जो, ये जो देहभान के जो आदतें हैं ना, इनसे वैध संकल्प पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं वैध संकल्प मुक्त बनो, तो वैध संकल्प इन देहभान की आदतें जो अंदर मन में समाई हुई उनसे बनते हैं, ठीक है। ये जो दिल है ना, दिल को तीसरी आंख भी कहते हैं, दिल को ही तीसरी आंख भी कहते हैं, बाबा अपनी पलके भी कहता है, पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा, है ना, ये दिल तख्त भी कहते हैं इसको ना। तो ये जो दिल है हमारा, अब इसके लिए बहुत लास्ट में, सिर्फ मैं 5 मिनट में, बहुत सिंपल सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है, गीता में लिखा हुआ है, बाबा ने हमें समय समय पर बताया, और हमारे सार, हमारे ज्ञान का सार भी क्या, मनमना भाव है ना। तो अब इसमें हम लास्ट में इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ये तो प्रॉब्लम हमारे सामने बता दी मैंने, अनकॉन्शियस मन। अब अनकॉन्शियस मन का असर किस पे रहता है, हमारे दिल पे रहता है, हमारी विवेक पर रहता है, हमारी बुद्धि पर रहता है, हमारे चित्त पे रहता है। हम चाहते हैं बदल जाए कि तो बदल नहीं पाते, वो परिस्थितियां हमारे सामने जाती हैं, घर वालों के रूप में, माता पिता के रूप में, भाई बहनों के रूप में, है ना, पति पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, घर में रिश्तेदार आ जाएंगे उनके रूप में, समस्याओं के रूप में, है ना। तो वो परिस्थिति हमारे सामने है, वो हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब, अनकॉन्शियस माइंड हमारी बुद्धि पर असर डालता रहता है। ठीक है, अब हम क्या करें। बाबा ने इसके लिए हमें 5 स्टेटमेंट बताए हैं, 5 महावाक्य दिए हैं। पहला महावाक्य पूरा करो, दूसरा महावाक्य शुरू होता है, और दूसरा महावाक्य पूरा करो, तीसरा महावाक्य शुरू होता है, तीसरा पूरा करो, चौथा शुरू होता है, चौथा पूरा करो तो पांचवा शुरू होता है, और पांचवा पूरा करो तो फिर हमें भगवान से मिलन होता है। ठीक है, तो पहला महावाक्य क्या है, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, ये 4 बातें हैं। इन चारों को बुद्धि से भूल, पहले इन चारों को बुद्धि से भूलो, फिर अपने को आत्मा निश्चय कर। जब तक हम इस अपने इन चारों को बुद्धि से नहीं भूलते हैं, हम अपने को आत्मा निश्चय नहीं कर सकते। देखो ब्राह्मणों की एक विशेष बात है, 30 साल का स्टूडेंट भी क्या करता है, जैसे कभी भी डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर या MBBS कर रहा है या MD कर रहा है, कभी नहीं शुरू करता A4 Apple, पढ़ाई करना शुरू करते समय बोलता है कभी मन में A4 Apple, B4 Bat, C4 Cat, फिर पढ़ना शुरू, ऐसे होता है क्या, नहीं, वो आगे से पढ़ाई शुरू करता है ना। और हम क्या करते हैं, जैसे जय 30-40 साल वाला भी पढ़ेगा ना, करेगा ना, योग लगाएगा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, अभी तक ABCD कर रहे हो क्या, नहीं अभी तक ABCD करते हैं, वो पहला जैसे नहीं याद नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक अपने आप से बात नहीं की है। तो पहली चलते फिरते ये बात करो कि सचमुच मैं देह हूं क्या, अभी मैं आत्मा निकल जाऊं तो देह क्या क्या होगी, क्या होगी ये देह की क्या वैल्यू है। तो बार बार अपने आप चलते फिरते मैं देह नहीं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, देह इस सूल देखो चलाने वाले अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, चलते फिरते उठते बैठते बार बार ही अपने आप से बात करो, छोड़ो देह का भान। ये नहीं योग करने बैठे तो ये शुरू कर दिया बोलना और बाकी सारा दिन देह के भान में खोए हुए हैं, 45 मिनट तो इसी चक्कर में चले जाते हैं, ये बोलते सोचते सोचते ही मैं देह हूं के आत्मा हूं, नहीं नहीं होता। मैं आपकी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, अपनी भी बता रहा हूं, मैं तो खैर अभ्यास किया इसका बहुत ज्यादा, तब जाके ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे हमें दिल वालों को तो 7 दिन में उनको तो ब्लॉकेज खोल के भेजना होता है ना, नहीं तो मेरे नहीं खुले तो उनके कैसे खुलेंगे ना, मन के ब्लॉकेज खुलेंगे तो हार्ट के ब्लॉकेज खुलेंगे ना, नहीं तो चलते फिरते हमको अभ्यास करना चाहिए ना हर समय, तब बैठ के हमारा योग लगेगा ना, तब हमारे विक्रम विनाश होंगे ना। तो ये अभ्यास गहराई से करना चाहिए, ठीक है। इसको भूलो, बुद्धि से निकालो, दिल से निकाल दो, बाहर निकाल दो देह भान को, फिर देखे संबंधियों को, है ना, मां बैठी है दिल में ना, बाप बैठा है, भाई बहन बैठे हैं, पत्नी बैठी है, पति बैठा है, बच्चे बैठे हैं, बिजनेस बैठा है ना, इन जो देह ये संबंधी सारे अंदर बैठे हुए हैं उनको सबको पकड़ो, बाहर बाहर पकड़ पकड़ के बाहर निकालो ना, घर से बाहर नहीं निकालना, कहीं घर से बाहर निकालना है ना, एक एक को बाहर निकालो, बुद्धि से भूलो उनको, नहीं ये मेरे संबंधी नहीं है, इनसे तो मेरा बंधन है, इनसे मेरा क्या है, संबंध नहीं है, संबंध तो उसके साथ है, संबंध जिससे मिलता है, सदा मिलता है, अनकंडीशनल मिलता है, वो इनको देना पड़ता है, इनको शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। बच्चे क्या चाहते हैं हमसे बताओ, पति क्या चाहता है, पत्नी क्या चाहती है बताओ, हम जो मर्जी करते रहे वो शांत रहे, हमें प्यार करते रहे, सब कुछ सहन करते रहे, ये तो चाहते हैं वो लोग, नहीं बच्चे क्या चाहते हैं, माँ बाप हमारे क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल शांत रहे, हमसे प्यार करता है, जो हम जो मर्जी बोले, डांटे कुछ मर्जी करें, नहीं। सास क्या चाहती है, काम में लगे रहे, चुपचाप काम में शांति से काम करती रहे, हमें इज्जत से बात करती रहे, नहीं तो वो शांति प्यार खुशी कहां से आएगी, कोई शांति प्यार खुशी हमें देता है क्या, वो देता वो है और बांटने सबको पड़ती है, तो हमारा संबंध उनके साथ है, यहां तो हमारे क्या है, बंधन है, फर्ज है, कर्म के हिसाब से अकाउंट क्लियर है, ठीक है। तो संबंध मेरे के एक संबंध उनके अपने आप से, आज मैं ये बात कर रहा था बाबा से सुबह सुबह कि प्यार में कमी है तो बाप से प्यार में कमी, तो बाप से एक रस से आदमी रह सकती, एक रस से आदमी नहीं सकती, तो मेरा प्यार बाप के अलावा किसी में ना हो, सारा प्यार बाबा के साथ हो, किसी देहधारी से, मां से, बाप से, भाई बहन से, पति पत्नी से, बच्चों से ना हो, ये तो बंधन है ना।
वो गीत भी है ना, कैसा है ये बंधन अनजाना, है ना, अनजाना बंधन है। संबंध बोलते हैं कभी कभी, संबंध नहीं बोलते। कोई फिल्म का गीत देखो, कोई चीज का ये देखो, हमने तो फिल्म देखी 28 साल पहले देखी, ज्ञान में आने के बाद नहीं देखी, तो उसमें तो ये गीत होते ना, फालतू के गीत होते थे ना, सारे बंधन ही है ना। तो संबंध मेरे उसके साथ है और सबको अनुभव है सचमुच में बंधन है, तो अब चलते फिरते अपने आप से बातें करो। इतना धोखा खाया, इतना दुख पाया बंधनों में, कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो रियल को पहचानो, तो ये अपने आप से बात करो। फिर देखे स्वभाव, स्वभाव ये देखा स्वभाव, काम विकार देखा स्वभाव है क्या? ये पांचों विकार मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ये पशुओं का स्वभाव है। हमारा स्वभाव तो ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद और शक्तियां। पशुओं को, पशु इन विकारों को बाहर प्रैक्टिस करते हैं खुले में, इंसान कभी खुले में प्रैक्टिस नहीं करते। तो हमारी नेचर नहीं है ये, तो पशु का, हमारे अंदर पशु का जो वृत्ति है ना, जो द्वापर युग से आई, वो हमारी, ये तो वो वृत्ति हमारे अंदर घुस गई है। हम ऐसे नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। उनको अंदर से निकालो, ठीक है, और देखे पदार्थ। हमारा कोई पद, कोई भी चीज हमारे साथ जाएगी क्या? अपने आप से बात करो, ये जब हमारी देह हमारे साथ नहीं जाएगी तो बाकी कैसी चीज साथ में जाएगी? चलते फिरते बात करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जितना इसको चलते फिरते अपने आप से बात करोगे, ये देह की जो आत्मा की वैल्यूज है ना, सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, ये मेरे साथ जाएंगे। ये मेरी प्रॉपर्टी है, असली प्रॉपर्टी मेरी है, ये मुझे कितनी इकट्ठी करूं मैं, तो ये अपने आप से चलते फिरते बात करेंगे, तो फिर आत्मा, आत्मिक भाव अपने अंदर पैदा होगा। और जब आत्मिक भाव पैदा होगा तो फिर क्या होगा, इस दिल में आके कौन बैठेगा? तब परमात्मा की याद ठहरेगी। तो बाबा कहता है फिर अपने को आत्मा निश्चय कर, माम एकम याद करो। माम एकम मतलब सिर्फ मुझे याद करो, माम एकम का मतलब सिर्फ मुझे याद करो, किसी दूसरे को नहीं। जब सिर्फ हम उसको याद करेंगे, वो कौन है? दिलाराम कौन है? शिव बाबा कौन है? ज्ञान का। अब दिलाराम यहां पर आ गया, इसकी याद यहां आ गई, तो क्या होगा? वो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का सागर है। जब वो सागर आ गया हमारे दिल में, तो क्या होगा? जो विवेक हमारा भ्रष्ट हो गया था वो क्या हो जाएगा? विवेक वापस सत्य विवेक बन जाएगा। सातों से भर गया ना हमारा दिल, तो विवेक वापस सत्य विवेक हो जाएगा। बुद्धि क्या हो जाएगी? भ्रष्ट से वापस दिव्य हो जाएगी। और चित्त में जो फाइलें होंगी अब जानी बंद हो जाएंगी। फाइलें क्या होंगी? पुरानी फाइलें सब जलनी शुरू हो जाएंगी। कौन आ गया अंदर? दिलाराम आ गया ना अंदर, तो सारी विवेक की जो पुरानी फाइलें हैं ना, जो अभी इस जन्म की फाइलें, वो सारी फाइलें डिलीट होती जाएंगी। और जब फाइलें डिलीट होनी शुरू हो जाएंगी, तो विवेक हमारा कैसा होता जाएगा? शांत, एकाग्र और आनंदमय होता जाएगा। जब दिल में सत्य आ गया, सत्यम शिवम सुंदरम आ गया, तो क्या होगा? हमारा चित्त कैसा होता जाएगा? शांत, एकाग्र और आनंदमय होता जाएगा। और चित्त अगर शांत, एकाग्र, आनंदमय होता है, नींद गहरी आती जाएगी। बिस्तर पे जैसे गए, 10 बजे गए, और ऐसी नींद आएगी फर्स्ट क्लास, 2 बजे का टाइम तो 2 बजे, 4 बजे का टाइम तो 4 बजे, एकदम एक्यूरेट आंख खुलेगी बिना अलार्म के। और ऐसी आंख खुलेगी, एकदम अलर्ट होके बैठेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं जैसे जैसे बताया था मैं थोड़ी देर पहले, ऐसा अमृत वाला नहीं, झटकू वाला नहीं, है ना, एकदम झटकू मतलब एकदम एक सेकंड में वहां पहुंचे। योग का उल्टा क्या है? योग का उल्टा क्या है? गए हो ना, एकदम गए हो जाएंगे। योग खत्म, अभी क्या हो जाएगा? गए हो। कहां पर गए हो? मन बुद्धि से परम धाम गए हो, नहीं, ऐसी प्रैक्टिकल स्थिति बन जाएगी आपकी, है ना। तो हमारा चित्त खत्म हो जाएगा, चित्त मतलब शांत एकाग्र हो गया, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और फिर हमारा जो है कॉन्शियस माइंड में एबीसीडी रिकॉर्ड हो, एबीसीडी माना ज्ञान का सार क्या? एबीसीडी, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा। ये रिकॉर्ड जो दिल में होता है वो चित्त में, वो हमारी बुद्धि में रिकॉर्ड होता है, फिर हमारी स्मृति में रिकॉर्ड होता है। स्मृति जब हमारी एबीसीडी रिकॉर्ड होगा, वृत्ति सबके प्रति आत्मिक होती जाएगी, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? धीरे धीरे जैसे फिर हमारा क्या होगा? इस जन्म का पाप खत्म होगा, सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो गया, अब अगले जन्म वाली फाइल खुल जाएंगी, पिछले जन्म वाली, कौन सी वाली? 82वें जन्म वाली। अब 82वें जन्म आ जाएगा, उसका बुढ़ापा आएगा पहले, फिर जवानी आएगी, फिर बचपन आएगा। इसमें क्या होगा? जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे में भी इतने विकार नहीं होते, जवानी में विकार होते हैं, तो कई दिन तो अच्छा योग लगेगा, और फिर जैसे जवानी का टाइम फाइल खुलनी शुरू होगी ना, तो थोड़ा अमृत वाला करते करते, मुरली सुनते सुनते भी कैसा होगा? स्थिति ऊपर नीचे होगी। आपने देखा होगा, आज अमृत वाला अच्छा हुआ, बहुत बैठे तो एकदम उड़ गए, और कल आज देखा तो कल तो अच्छा हुआ था, आज देखो तो कोशिश करे जा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं, लगी नहीं रहा, नहीं होता, मुरली में मजा ही नहीं आ रहा। हम पर कोशिश करते रहो, नहीं लगे तो भी, ये जो दिनचर्या ना हमारी, नियम और मर्यादाएं, चार नियम चार मर्यादा, अमृत वेला कभी मिस मत करो। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, क्लास में जाके मुरली सुने, घर में नहीं, टेलीफोन पे नहीं, इंटर वो कौन सा पीस ऑफ माइंड पे नहीं, क्लास में जाके नहा धो के बड़े भावना से जाके मुरली, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुने, अमृत वेला, मुरली, और तीसरा जो सारा दिन कर्मयोगी बनके कर्म करे, दिन में कम से कम 21 बार मुरली का अध्ययन करे। कितनी बार, ये मुरली क्या है, बाबा का लव लेटर है ना, प्रेम पत्र है ना, हमेरा हमारे लिए ना, तो कहां रखना चाहिए मुरली, कहां रखनी चाहिए, कहां रखनी चाहिए, दिल के पास ना, दिल यहां पर है ना, लेफ्ट साइड में ना, तो दिल के पास, प्रेम पत्र कहां रखते हैं, कहां पे रखते हैं, दिल के पास रखते हैं छुपा के, और जैसे ही मौका लगता है कैसे पढ़ते हैं, देखते हैं आसपास कोई देख नहीं रहा तो क्या करते हैं, जो निकालते हैं एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर अंदर रख देते हैं, देखते हैं आसपास कोई तो नहीं है ना, फिर देखते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। सारी मुरली पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, एक लाइन पढ़ो, दो लाइन पढ़ो, वरदान पढ़ो, स्लोगन, और जरूरी नहीं आपको मुरली मिलेगी सेंटर पे, एक इतना इतना सा कागज ले लो, A4 साइज का पेपर ले लो, उस पर नोट कर लो, मीठे बच्चे, वरदान, स्लोगन, धारणा के लिए मुख्य सार, एक दो लाइन और जो आपको बहुत अच्छी लगी हो नोट कर लो, और उसको ऐसे बस छोटा सा कागज जेब में रखो, ठीक है, और वो दिल से लगा के रखो, दिन में 20 बार पढ़ो, 25 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, मतलब वो लाइन बार बार रिवाइज करो, और फिर चिंतन करो उसके ऊपर, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण, ये चार बातें, मनन मन मना रिवाइज करना, चिंतन मना अपने आप से लगा के देखना, और मंथन मना घोटना, इसी पॉइंट को बार बार घोटो कि बाबा का इसमें क्या रहस्य था, क्योंकि बाबा का हर अक्षर, हर महावाक्य रहस्य है, गोपनीय है, और क्या है, रहस्य युक्त है, गोपनीय है, और गुह्य है, गुह्य रहस्य मुक्त, रहस्य युक्त और गोपनीय है, ठीक है, गहराई है उसके अंदर। फिर बाबा से पूछो, बाबा जब हम मंथन करते हैं बाबा से, फिर बाबा टच करता है बुद्धि को, क्योंकि हम खो जाते हैं बाबा के साथ, फिर बाबा कहते हैं बच्चे इसका मतलब ये था, मैंने इसका मतलब ये कहा था, इसका अर्थ ये है, है ना, तो बाबा फिर समझा देता है उसको, फिर बार बार सिमरण करते रहो, मक्खन निकला ना उसको बार बार रिवाइज करते जाओ, सिमरण करते जाओ, तो तब हमारे अंदर स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो ये मुरली जो है बाबा का, मैं सारा दिन बार बार, इसी से हमारा कर्म और योग का बैलेंस रहेगा। और चौथी बात, सोने के पहले अपना पूरा पोता मेल माना सुबह से के रात तक क्या 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 गलतियां हुई, मर्यादा कहां ऊपर नीचे हुई, हमारी सोचने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, हाथों से कर्म करने में, कहां कहां हमने गलतियां की हैं, वो सब लिखो, साइन करो बाबा को। बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर क्या है, 000, 10 डायल करो तो स्टेट के बाहर, 20 डायल करो तो कंट्री के बाहर, और 30 डायल करो तो विश्व के बाहर। नहीं तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी साल में जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 हो गया। फिर उसके बाद चार्ट भरो, और चार्ट भर के मुरली पढ़ के सो जाओ। ये जो है चार नियम है हर ब्राह्मण के, इसमें कभी ऊपर नीचे मत करना, ठीक है। और फिर चार मर्यादाएं हैं, पवित्रता, जितनी अधिक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और सोपन तक पवित्रता बढ़ती जाएगी, वह संकल्प भी अपवित्रता है, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों करता है, ये इतने बड़े होके भी, इतने पुराने ज्ञान में आके भी ऐसे ऐसा करते हैं, ये भी गलत है, ये भी अपवित्रता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी का भी अंश भी अंदर होना अपवित्रता। तो जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी उतना मेरा बाबा से अमृत वेला बढ़ेगा। कई कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि पवित्रता में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है ना, काम विकार नहीं है किंतु क्रोध बाकी है, किसी ने किसी बात का लोभ बाकी है, कहीं ना कहीं किसी से मोह है, लगाव है किसके प्रति, है ना, किसी के प्रति झुकाव है, किसी के प्रभाव में हो, किसी से टकराव है, तो हमारा योग नहीं लग सकता, है ना। उसके प्रभाव वाला याद आएगा, टकराव वाला याद आएगा, अच्छा लगता है वो याद आएगा, बाबा से योग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो कि हमें हमारा पवित्रता की डिग्री बढ़ानी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, अपने को आत्मा समझना, दूसरे को आत्मा देखना, ये सबसे बड़ी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पवित्रता है, ठीक है। फिर शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन बाबा की याद में खाना। जब नई नई शादी होती है ना तो कैसे कैसे खाना खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, पति पत्नी को खिलाता है, पत्नी पति को खिलाती है, चार पांच दिन उसके बाद नहीं खिलाते, उसके बाद झगड़ा शुरू हो जाता है ना, है ना, चार पांच दिन तो खिलाते हैं। तो हमें हमारी थाली है ना, हम थाली लो कहां जाओ, सूक्ष्मता में थाली लेके चले जाओ, बाबा को आप खिलाओ बाबा आपको खिलाए, ठीक है। जैसे दादियां नहीं खिलाती हैं स्टेज पे, दिखा ना बाबा जब आते हैं तो ऐसे बाबा को खिला रहे हैं, बाबा फिर उनको खिला रहे हैं, ऐसे खाओ। वो सही मतलब शुद्ध सात्विक भोजन है। फिर सत्संग माना बाबा और मुरली का संग, बाबा और मुरली के अलावा कुछ मत पढ़ो, और बाबा की याद और मुरली और किताबें मैगजीन पढ़ना टीवी देखना ये दूसरे संग, इसका क्या कहते हैं रामदेव का सुनना ये सुनना, ये सब मुद्रा लगा के बैठना, कई लोग मुद्रा लगा के बैठते हैं, अब मुद्रा लगा के चलते फिरते बाबा को याद करना, चलाओगे कार चलाओगे ऐसे ऐसे करके, है ना, खाना ऐसे करके बनाओगे क्या, तो उस समय तो योग लगेगा ना, इसका मतलब आपका हमारा योग तो अंदर का योग है ना। कई लोग मैंने देखा ऐसे पता नहीं कैसे बैठते, मुझे पता नहीं कैसे बैठते हैं, कैसे कैसे होता है मुझे पता नहीं, ऐसे करके बैठते हैं, पता नहीं क्या करके बैठते, अरे भाई तुम ऐसे करके बैठ तो मन टिकेगा क्या, है ना, ज्ञान मुद्रा लगा के बैठते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। कोई मुद्रा की हमको आवश्यकता नहीं है, हर समय काम हर कार्य करते, उठते आज की मुद्रा में था उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर कर्म करते बाबा की याद रहनी चाहिए, है ना। तो हमें कोई प्राणायाम नहीं करना, हमें कोई सवासन नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हर काम करते हैं हमारी नेचुरल अटेंशन बाबा की याद में बाबा में रहनी चाहिए, ठीक है। या मम्मी को याद करते तो ऐसे करके करते, कैसे ऐसे करते है क्या मम्मी को याद, वो भी तुम्हारी मम्मी है ना, है ना पापा है ना, ऐसे नहीं, ठीक है। तो नेचुरल याद का अभ्यास बनाओ। और चौथी है दैवी गुणों की धारणा। एक बार गुस्सा किया तीन दिन तक आपको योग नहीं लगेगा, ठीक है, अच्छा वो पावरफुल योग नहीं लगेगा। एक बार उदास हो गए पांच दिन तक योग नहीं लगेगा। इसे जल्दी चिंता गुस्सा उदासी ये सब का परहेज करो, राइट। सत्यता निर्भयता अंतर्मुक्ता जो बताए ना 20 25 30 35 40 दैवी गुण है उनको धारण करो, ठीक है। तो चार नियम और चार मर्यादा, जितनी मर्यादा बढ़ती जाएगी उतना योग लगता जाएगा, उतना अच्छा अमृत वेला होगा, उतनी मुरली याद रहेगी, उतना अच्छा कर्मयोगी बनेंगे, उतना सच्चाई से लेटर बाबा को लिखोगे, ठीक है, उतना शक्ति पर उतना, फिर क्या धीरे धीरे हमारा अनकॉन्शियस मन खत्म होता जाएगा। ध्यान रखना जब जब हमारे ये 63 दिन आएंगे ना यूं ऊपर नीचे स्थिति होती है। अब माउंट आबू जो आते हैं ना कभी गाड़ी ऊपर को जाती कभी नीचे को जाती, कभी ऊपर को जाती कभी नीचे को जाती, किंतु हम लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने बताया जब हम जवानी बुढ़ापा होगा तो ऊपर को जाएंगे, जवानी होगी नीचे को आएंगे उस जन्म की, फिर बचपन आएगा फिर ऊपर को जाएंगे, क्योंकि जवानी में विकर्म होते हैं और बुढ़ापे और उसमें पापक्रम नहीं होते। तो योग का ध्यान रखना है, हमारी नियम और मर्यादा कभी ना टूटे, नियम मर्यादा कैसी भी स्थिति हो नियम मर्यादा कभी ना टूटे, और धीरे धीरे हमारा क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड भी खत्म होता जाएगा, और फिर अनकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाएगा, सबकॉन्शियस खत्म हो गया, तो टोटल हमारा 100% मन क्या बन जाएगा, कॉन्शियस बन जाएगा, तब हमारी 100% कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आएगी। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों की लाइफ में तीन फेज होती है, पहली होती है स्यूडो हनीमून फेज, स्यूडो हनीमून जब शुरू शुरू में आते हैं ना बाबा के घर में ज्ञान मिलता है तो एकदम बाबा से योग लगता है, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं, लगन उमंग उत्साह बहुत होता है, बस बाबा और मैं बाबा और मैं, किसी की परवाह नहीं, ना घर वालों की परवाह ना किसी की परवाह, बस बाबा 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 सारा दिन लगा रहता है बाबा बाबा, सूक्ष्म वतन पहुंच जाते हैं और बस बाबा से सारा टाइम बाबा की मुरलियां, ऐसा टेंशन लगता है 2-3 साल ऐसा नशा आता है कि बात मत पूछो, घर वाले कहते पागल हो गया है ना, फिर होता है विकर्म विनाश होना शुरू होता है, ठीक है, जन्म बाई जन्म। तो स्टेज ऐसे ऊपर नीचे होती है, उसे कहते स्टेज ऑफ केओस, आगे जा रहे हैं रोज मुरली सुन रहे हैं किंतु आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसा लगता आगे नहीं बढ़ रहे, स्थिति नहीं बन रही। तो फिर उसके बाद लास्ट में आता है स्टेज ऑफ रियल हनीमून, फिर हम बाबा से हमारा सचमुच हनीमून। तो मैंने बताया दे के संबंध, दे के स्वभाव संस्कार, दे के पदार्थों को बुद्धि से भूल पहले, फिर अपने को आत्मा समझ, फिर माँ में कम याद करो, माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर ये विक्रम विनाश होते हैं। ये विक्रम विनाश की जो विधि है ना इसमें हमारी स्टेज ऑफ केओस चलती है 63 जन्म की। उसके बाद हमारे जब पावन सतो प्रधान बनते हैं, और पावन सतो प्रधान बनते हैं तो बाबा से हमारा सही मिलन होता है, फिर समान बन के मिलन होता है, समान माना बाबा और मैं आपस में बातचीत करते हैं, है ना, बाबा वेट कर, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ, फिर बाबा काम देता है, बच्चे अभी देखो वहां वहां भूकंप आया ना, वहां इतने लोग मर गए, चलो वहां आत्माएं तड़फ रही हैं, चलो वहां जाके सेवा करो, बच्चे वहां सेवा करो, बच्चे हॉस्पिटल में इतने सारे लाखों लोग पड़े हैं, आईसीयू में पड़े हुए हैं, है ना, कितने करोड़ों लोग आईसीयू में पड़े हुए हैं, वो बेचारे तड़फ रहे हैं, उनको उनको सकाश दो, बच्चे उनको सकाश दो, बच्चे ये इस कैंसर के पेशेंट इनको सकाश दो, है ना, ये तुम्हें याद कर रहे हैं तो उनको सकाश दो, फिर ऐसी फिर ये हमारी स्थिति होती है, तब हमारी मनसा सेवा होती है, इसे कहते हैं फरिश्ता स्थिति। ठीक है, तो ये है मन जीते जगत जीत, है ना, तो इस तरह से मन को जीता जाएगा, है ना, जो हमारा मन हमारे वश में नहीं है, अनकॉन्शियस मन किसने बनाया, हमने बनाया, सबकॉन्शियस मन किसने बनाया, हमने बनाया। ठीक है, तो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस खत्म करेंगे तो 100% कॉन्शियस मन हो जाएगा, आत्मा सत्व प्रधान जब होगी, आत्मा में सातों गुण भरपूर होंगे तो आत्मा के शेयर ज्यादा हो जाएंगे और फिर हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा, फिर जहां चाहे जितना समय चाहे जब चाहे वहां पर लगा सकेंगे। ठीक है, तो मन जीते जगत जीत, फिर हम कर्मेंद्रीय जीत बनेंगे, फिर हम माया जीत बनेंगे, प्रकृति जीत बनेंगे, फिर निर्विघ्न बनेंगे, वैध संकल्प मुक्त बनेंगे, और क्या बनेंगे, दादी ने एक बार जानकी दादी ने कहा था 5 स्टेप्स होते हैं फरिश्ता बनने में, पहला है विक्रमाजीत, पहले विक्रमाजीत सारे विक्रम खत्म हो जाते हैं और फिर कर्मातीत, फिर कर्म करने का बंधन नहीं आता, अभी अच्छा कर्म करो तो भी फंस जाते हैं, किसी की सेवा करो ना वो भी कहेगा आपके पीछे पीछे लग जाएगा, है ना, वो भी बंधन हो गया नहीं हो गया, तो अभी विक्रमाजीत नहीं बने, अभी विक्रम कर भी रहे हैं और अच्छे भी बन रहे हैं पूरे भी बन रहे हैं, अभी विक्रमाजीत पहले बनना है, फिर कर्मातीत बनेंगे, कर्मातीत बनने के बाद संपूर्ण बनेंगे, मतलब सातों एनर्जी हमें भरनी शुरू होंगी, मतलब पावन सत्व प्रधान बनेंगे, जब पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे फिर अव्यक्त बनेंगे, अव्यक्त माना फिर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आंखों की भाषा, इशारे की भाषा, संकल्पों की भाषा काम करेगी, संकल्पों की भाषा, इशारे की भाषा ये काम करेगी, आंखों की भाषा काम करेगी और फिर हम फरिश्ता बनेंगे, राइट, और फरिश्ता बनने के बाद फिर वापस घर जाएंगे बाप के साथ, जितना अच्छा फरिश्ता, जितनी अच्छी स्टेज वाले फरिश्ता बने उतना बाबा के समीप होंगे जाते समय, और फिर वहां से उस बिंदु रूप स्थिति से फिर दैवी गुणों का दैवी गुण रूप वाले देवी देवता बनके धरती पर वापस आए। ओम शांति। ये टॉपिक बहुत लंबा है ना, समझ में आया सभी को, ऐसे लेक्चर्स बने हुए हैं इसके, 3D हेल्थ केयर में लेक्चर्स बने पर इतने गहराई से नहीं बने हुए, क्योंकि मैंने जब बहन जी ने टॉपिक दिया तो मैंने इस पर गहराई से सोचना शुरू किया, है ना, मन जीते जगत जीत पर, तो कुछ तो अभी नई नई बातें 2 दिन में उभरी, जब भी बहन जी ने मुझे टॉपिक दिया ना तब से, तो कुछ बातें तब उभरी, कुछ बातें इतनी मतलब अच्छी क्लासेस इतनी मतलब गहराई से नहीं बनाया हुआ था।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, हाँ, हाथ में।